अध्याय का शीर्षक है देवहूति का शोक। श्लोक क्रमांक 56। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवनपि मृतोपि सह नहीं इह यहाँ यत् जो कर्म कार्य धर्माय धार्मिक जीवन की सिद्धि के लिए न नहीं विरागाय विरक्ति के लिए कल्पते ले जाता है न नहीं तीर्थपद भगवान के चरण कमलों का सेवायै भक्ति के लिए जीवन जीवित रहकर अपि यद्यपि मृत मरा हुआ ही निश्चय ही सह वह। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता तो उसे जीवित ही मृतक माना जाता है। तात्पर्य देवहूति का कहना है कि वह अपने पति से इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुरक्त थी जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती, अतः उसका जीवन वृथा गया। ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति न हो सके वह व्यर्थ है। स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कार्य करना चाहता है और जब उस कार्य के करने से धार्मिक जीवन मिल सके और फिर इससे विरक्ति और विरक्ति से भक्ति प्राप्त हो सके तो समझना चाहिए कार्य सिद्ध हुआ। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि जिस कार्य के करने से अंततः भक्ति प्राप्त नहीं होती वह भवबंधन का कारण बनता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधनः। यदि कोई अपने सामान्य कार्य से प्रारंभ करके क्रमशः भक्ति के पद को प्राप्त नहीं कर लेता तो उसे मृतक के समान मानना चाहिए। जिस कार्य से कृष्ण भक्ति का ज्ञान न हो ले वह व्यर्थ है। ओम ज्ञान। हम श्रीमद्भागवतम के एक महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा कर रहे हैं। देवहूति जो भगवान के साक्षात अवतार जो थे कपिल देव, उनकी माँ है और वह कपिल देव ने उनको संदेश देने के बाद वह भी उनको साक्षात्कार हो जाता है। वह भी भगवत भक्त है तो अभी वो अपना विलाप व्यक्त कर रही है कि कैसे मैंने धार्मिक कार्य तो किया जिंदगी भर पर मैंने भक्ति पे केंद्र नहीं किया खुद को, तो इसलिए मेरा धर्म जीवन अपि मृतो ही सह जीवन यह व्यर्थ हो गया है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो जीवात्मा हमारे महान वैष्णव आचार्य है, वे जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है उसको उसकी स्थिति समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। एक जंगल से एक व्यक्ति गुजर रहा है और तब जाते समय वो एक खड्डे में गिर जाता है और बहुत बड़ा खड्डा है वो, पर उसमें पत्थर नहीं है, उसमें कुछ मुलायम चीज़ है। उसमें गिर जाता है वो और क्योंकि मुलायम चीज़ है नीचे तो उसको ज़्यादा चोट नहीं होती है, पर वहाँ पर जब गिर जाता है तो इतना ऊँचा खड्डा है वो, इतना गहरा खड्डा है कि बाहर निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और फिर वहां पे गिरा हुआ है और अभी कुछ खाने के लिए है नहीं, और फिर वो देखता है ये क्या मुलायम चीज है जिसपे मैं गिरा हूं, और पाता है कि ये है क्या है, ये नमक है। तो इट इज लाइक अ सॉल्ट माइन, वो ऐसे सागर के तट पर ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सा नमक एक जगह पे हो गया है, वहाँ पे किसी ने उसको खनने के लिए वहाँ पे खड्डा बनाया है और उसमें वो गिर गया है अभी। तो अभी वो नमक के एक खाई में गिर गया है और बाहर नहीं निकल सकता है, उसको भूख लगी है, फिर कुछ खाने के लिए नहीं, इसलिए वो उठा के नमक खाने लगता है। अभी कोई सब्जी में या दाल में नमक नहीं होगा तो हमको बुरा लगता है, नमक क्यों नहीं, नमक लाओ, नमक डालना है। पर मान लीजिए अगर सिर्फ नमक ही देते हैं हमको खाने को तो खाना नामुमकिन है। वो तो एक दो घास खा लेता है और फिर थूक देता है बाहर, वो सहन ही नहीं होता है। फिर वापस उसको भूख लगती है और कुछ खाने को है नहीं, वापस वो नमक खाने लगता है और वापस थोड़ा खाने के बाद थूक देता है उसको। और ऐसे ही वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वहां पे, उसके बाहर निकलने की क्या गुंजाइश है। तो वो कहते हैं विश्वनाथ शेखर ठाकुर, ऐसे ही जीवात्मा की इस भौतिक जगत में परिस्थिति है कि जो इंद्रिय तृप्ति का सुख है वो बोलते हैं नमक के समान है। क्यों? क्योंकि हमें कोई और सुख पता नहीं है, कोई और सुख प्राप्त करने का मार्ग मालूम नहीं है, इसीलिए बार बार इसी इंद्रिय तृप्ति के पीछे हम लग जाते हैं। पर इंद्रिय तृप्ति, इसे पहले भूख लगी है तो नमक भी खाने को अच्छा लगता है, पर थोड़ा खाने के बाद फिर से मराठी में कहते हैं वीटाली माला, तंग आ जाते हैं मुझसे। तो वैसे ही हम देखते हैं कोई भी इंद्रिय तृप्ति का साधन हो, कोई भी भोग का मार्ग हो, वो कोई कहता है कि मैं मूवी देखने जाऊंगा तो पहले जब मूवी देखने जाते हैं तो अच्छा लगता है, पर वही मूवी किसी को बोलो आप 10 बार 15 बार देखो तो तंग आ जाएगा वो। या कोई भी खाने की वस्तु हो, शुरुआत में अच्छी लगती है, एक गुलाब जामुन, दो गुलाब जामुन, पर कोई बोले 50 गुलाब जामुन खाओ, बोले बहुत हो गया, नहीं चाहिए मुझे। तो कोई भी इंद्रिय तृप्ति की जो वस्तु होती है वो शुरुआत में थोड़ी आनंद देती है, वास्तव में वो आनंद नहीं है, पर वो क्या है, कोई और आनंद का मार्ग हमको पता नहीं है इसलिए उसके पीछे लग जाते हैं और बाद में वो ही चीज छोड़ देते हैं। शास्त्र बताते हैं ये भोग और त्याग। तो इससे बाहर निकलने का लगभग कोई भी गुंजाइश नहीं है जीवात्मा को। तो जो बड़े बड़े विचारवंत है वो कहते हैं, ऐसे बुद्ध और जो शंकर, ये सब कहते हैं कि ये इंद्रिय तृप्ति ही दुख का कारण है, तो इसीलिए इंद्रिय तृप्ति छोड़ दो। आशा ही परमम दुखम, निराशा परमम सुखम। आप आशा छोड़ दो, आप शांत हो जाएंगे। त्यागा शांतिर अनंतरम, भगवान भी कहते हैं आप त्याग की भावना आ जाएगी आप में तो शांति मिल जाएगी आपको। पर इसमें समस्या ये है कि अशांत रहना यह हमारा स्वभाव नहीं है, हमें इंद्रिया है और इंद्रिय से हम कुछ कार्य करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ये समझाने के लिए सरल उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को बहुत खतरनाक बीमारी हुई है और उसके कारण जो भी वो शरीर को हिलाता है उसको दर्द होता है, हाथ हिलाए तो आ दर्द होता है, सिर हिलाए तो आ दर्द होता है, तो जो भी हिलाता है शरीर उसको दर्द होता है। तो उसकी इच्छा होती है कि मैं बस शरीर को हिलाना बंद कर दूंगा तो सारा दर्द बंद हो जाएगा, और वही उसकी तमन्ना है, मैं सिर्फ निष्क्रिय बनना चाहता हूँ। पर मान लीजिए वो यशस्वी भी हो जाए शरीर को न हिलाने में, तो हाँ दर्द चला जाएगा, पर क्या होगा उसके बाद में, दर्द से जैसे ही राहत मिल जाएगी उसको पुनः इच्छा हो जाएगी कि मुझे हिलना है, चलना है, कुछ कार्य करना है। कब तक वो निष्क्रिय बैठा रहेगा? तो उसके दर्द का कारण उसका हाथ पैर हिलाना नहीं है, उसके दर्द का कारण क्या है, उसकी बीमारी है। तो सिर्फ हाथ पैर हिलाना रुकने से वो दर्द भले ही चला गया, जब तक बीमारी है तब तक वो दर्द पुनः वापस आ जाएगा। ठीक उसी तरह से जो हम भौतिक कार्यों में लग जाते हैं तो हमें अनेक बार क्लेश महसूस करने पड़ते हैं। कोई भी इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लग जाता है, शास्त्र बताते हैं कैसे है, कोई व्यक्ति मधुमक्खी के जो जहां वो मधु रखते हैं वहां पर जाके मधु चखने के समान है, तो उसमें स्वाद है पर उसके बाद इतने सारे मधुमक्खियां काटते हैं। तो कोई भी हम भौतिक कार्य में लगते हैं तो उसमें बहुत सा क्लेश उत्पन्न होता है। तो इसीलिए ये ज्ञानी लोग जो है, जो तत्वज्ञान बुद्ध और शंकर ने बताया था, शंकराचार्य ने, कि आप निष्क्रिय हो जाओ, कार्य रहित हो जाओ। वो कैसे है, अभी जैसे वो बीमार व्यक्ति हिलना चलना बंद कर दे ऐसे, हाँ उसे शांति मिल जाएगी, पर शास्त्र बताते हैं कि वास्तव में हमारे जो दुख का कारण है वह है भगवान की विस्मृति, भगवान से अलग होकर कार्य करना, यह हमारा हमारी गलती है, यह हमारी बीमारी है। कार्य करना यह बीमारी नहीं है, पर भगवान से अलग कार्य करना यह बीमारी है। तो कार्य करना ये हमारा स्वभाव है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कैसे अगर कोई स्कूल में पाठशालाओं में कभी कभी एक सैकरेस होती है, मतलब सैकरेस यानी वो विद्यार्थी को एक व्हाट यू कॉल अ सैक, बोनी में उसको पैर बांधने पड़ते हैं, उसको भागने को बोलते हैं। तभी बोनी में अगर पैर बांधने हैं तो भागना मुश्किल है। अगर वो पैर में जो बंधन है बोनी का निकाल देगा तो और तेजी से भागेगा वो। तो वैसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं जो शरीर है ये आत्मा के लिए बहुत बड़ा बंधन है, बोझा है। तो इस शरीर के बोझे के साथ आत्मा अगर इतना कार्यशील है, तो अगर शरीर का बोझा नहीं होगा, आत्मा मुक्त हो जाएगा, तो और कितना कार्यशील होगा। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो कार्य रहित हो जाएगा। तो इसलिए एक है कि अस्वस्थ बीमार कार्य, बीमार अवस्था में कार्य करना, वो है भौतिक कार्य, भगवान से विमुख होकर कार्य करना, उससे दुख ही मिलता है। पर कार्य रहित हो जाना यह उसका हल नहीं है। शास्त्र बताते हैं कि हमें भगवान की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। तो इस श्लोक में जो बताया गया है कि मान लीजिए अगर हमने गणित सीखा है तो एक नेगेटिव एक्सिस होता है, जीरो होता है, और पॉजिटिव एक्सिस होता है। तो जो नेगेटिव एक्सिस है वो है भौतिक कार्य, जो शून्य है वो कार्य रहित होना। पर भगवान की सेवा में जो कार्य करते हैं वह है पॉजिटिव एक्सिस, वह सकारात्मक कार्य है। तो इसीलिए इस श्लोक में चार चीज़ें बताई गई हैं। नेह यत कर्म धर्माय, तो अगर व्यक्ति कर्म कर रहा है तो आम शुरुआत कीजिए कर्म, ये फर्स्ट चीज़ है। तो अगर वो कर्म कर रहा है उससे धर्म में अग्रसर नहीं हो रहा है, उसका कर्म धर्म के अनुसार नहीं है, तो फिर वो कर्म सिर्फ बंधन का ही कार्य बनेगा, कारण बनेगा, और उस कर्म के कारण ही वह इस भौतिक संसार में दुख प्राप्त रहेगा जन्म जन्मांतर तक। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे भौतिक जगत में जीवन में हमारा जो पाप की श्रृंखला है वो खाने से शुरू होती है। अगर हम जो खा रहे हैं वो प्रसाद नहीं है तो भले ही वो शाकाहारी कार्य है, अन्न क्यों ना हो, पर फिर भी हम राइस दाल चपती चपाती खा रहे हैं, पर वो भी हम पाप खा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी से एक बॉब कोहेन जो बाद में प्रभुपाद जी के शिष्य बने, वो मिलने आए थे और वो उस समय वेजिटेरियन शाकाहारी बन गए थे। तो उस समय पाश्चात्य देशों में शाकाहारी बनना बहुत दुर्लभ था, तो इनको काफ़ी गर्व था मैं शाकाहारी हूँ। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा प्रभुपाद जी मैं शाकाहारी हूँ, तो प्रभुपाद जी बोले बंदर भी शाकाहारी होते, तो उसमें क्या बड़ी बात है। तो इसमें मतलब ये है कि हम भले ही शाकाहारी मांसाहारी अन्न कर रहे हैं तो बहुत ही पाप है, पर शाकाहारी अन्न भी पाप है। तो जब तक हम धर्म के अनुसार नहीं जी रहे तो पाप है, तो कर्म से धर्म होना चाहिए। पर धर्म में भी अलग अलग प्रकार है, कर्मकांड है, ज्ञानकांड है, उपासना कांड है। तो कर्मकांड मतलब क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी भौतिक जगत में हम घूमते रहते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में लोग भगवान के पास जाते हैं, ओ फादर डाउ आर्ट इन हेवन गिव अस आवर डेली ब्रेड, कि हे भगवान जो आप स्वर्ग में हो हमें हमारा रोज का खाना दीजिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज लव ऑफ ब्रेड नॉट लव ऑफ गॉड, वो कहते हैं ये भगवान का प्रेम नहीं है, ये ब्रेड का प्रेम है, ये खाने का प्रेम है, कि आप खाने के लिए भगवान के पास जा रहे हैं। तो ये हमारे हिंदू धर्म में भी कई बार होता है, लोग भगवान के पास मंदिर में आते हैं किस लिए, वे भगवान से मांगने के लिए। होटल में जाते हैं, कुछ कुछ होटल में घंटी होता है टन टन टन, तो वेटर भागते भागते आता है। तो वैसे ही लोग सोचते हैं मंदिर में आते तो घंटी होना चाहिए टन टन टन, फिर हम भगवान को बोलेंगे हमको क्या चाहिए। तो यह है कर्मकांड। अच्छा है कि लोग भगवान के पास कम से कम जा रहे हैं, पर इससे हम भवबंधन से निकलेंगे नहीं। तो इसीलिए अगले बता रहे हैं, ठीक है धर्म कर रहे हैं, पर धर्म का क्या फल होना चाहिए, विरागाय। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, धर्म से वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। वैराग्य मतलब इस ऐसे नहीं है कि सबको सन्यासी बनना है, पर वैराग्य का अर्थ है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अ डिवोटी शुड लूज फेथ इन हिज मटीरियल डिजायर्स। बहुत सुंदर बताते हैं वो कि जो भक्त है उसको अपनी भौतिक इच्छाओं में श्रद्धा खोनी चाहिए। मतलब है जब तक हम भौतिक जगत में है भौतिक इच्छाएं आएगी, पर जो शास्त्र के अध्ययन के अनुसार साधुओं से श्रवण करके और हमारे खुद के अनुभव से हम समझ जाते हैं कि भौतिक इच्छाओं के पूर्ति से मुझे सुख नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए भौतिक इच्छाएं आएगी भी पर उसकी पूर्ति के पीछे भक्ति नहीं लगता है। तो वो है विरागाय। विरागाय मतलब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की इच्छा चली जाती है। प्रभुपाद सेज वन लूजेस द टेंडेंसी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, टेंडेंसी टू फुलफिल सेंस ग्रेटिफिकेटरी डिजायर्स। तो धर्म अगर कर रहे हैं तो धर्म से वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। अगर धर्म से भी इंद्रतृप्ति की इच्छा रह रही है तो हम क्या कर रहे हैं, हम वास्तव में धर्म का उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। पर वैराग्य भी पर्याप्त नहीं है। तो एक बार एक भारत में एक प्रभुपाद जी के समय एक आध्यात्मिक नेता थे, वो कहते थे कि मैं पैसे को छूगा भी नहीं क्योंकि पैसे माया है और मैं पवित्र रहना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले ये अपूर्ण कृष्ण अपूर्ण चेतना है। एक तरह से हम देख सकते हैं कि पैसा भवबंधन का कारण है, पर वास्तव में जो भक्त है उसका क्या लक्षण होता है, पैसा ये लक्ष्मी देवी है, तो लक्ष्मी देवी को हमें नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे पैसे को छूने की बात क्या है, अगर तुमको मुझे एक हाथ में पैसा दोगे तो मैं दूसरा हाथ आगे करूंगा और पैसा दो मुझे। तो प्रभुपाद लोभी नहीं थे, पर प्रभुपाद जानते थे कि जो वो पैसे को लक्ष्मी के रूप में देखते थे। और यह मतलब क्या है, तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि यह भौतिक जगत मेरे भोग के लिए है, और तो उससे ऊंचा स्तर है दूसरा स्तर कि ठीक है ये मेरे भोग के लिए नहीं है तो फिर मुझे इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। पर इससे ऊंचा स्तर क्या है, ठीक है ये भौतिक जगत मेरे भोग के लिए नहीं है पर किसके लिए है फिर, ये भगवान के लिए है, तो भगवान की सेवा के लिए है, इसीलिए ये सर्वोच्च चेतना है। इसलिए अगले लाइन में बताया गया है न तीर्थ पद सेवा यही, ठीक है वैराग्य आ गया पर वैराग्य के बाद, ठीक है ये वैराग्य मतलब आप ये तीन स्तर समझ रहे हैं। दूसरा स्तर क्या है कि मैं ये जीवन मेरे दुनिया मेरे भोग के लिए नहीं है, पर उसके बाद में क्या, ठीक है फिर ये दुनिया है किसके लिए, ये भगवान ने मुझे आंखें कान जिह्वा दी किस लिए है। चलो कहते हैं शांत रहो ज़्यादा बड़बड़ मत करो, अच्छी बात है, लोग आँख बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो बुरा मत कहो बुरा मत देखो ये अच्छा है, पर उसका कॉन्वर्स क्या है कि अच्छा देखो अच्छा सुनो। तो हमारे भक्ति मार्ग में क्या बताया गया है कि सब इंद्रिया जो है वो भगवान ने ही हमको दी है और भगवान हमको भवबंधन में फंसाना नहीं चाहते, तो इंद्रिया दी किस लिए है, भगवान की सेवा के लिए। हमको आँखें दी किस लिए है, भगवान का सुंदर रूप को दर्शन करने के लिए। हमें जिह्वा दी किस लिए है, भगवान का गुणगान करने के लिए। कुलशेखर महाराज कहते हैं ते नेत्रे तमसोज्युते सुरुचिरे याभ्याम हरिर् दृश्यते सा बुद्धि विमलेन्दु शंख धवला या माधव ध्यायिनी सा जिह्वा अमृत वर्षिणी प्रतिपदम या स्तौति नारायणम। वे कहते हैं कि वो जिह्वा जो भगवान का गुणगान करती है वो क्या कर रही है, हर पल अमृत का वर्षाव कर रही है खुद के लिए और सब लोगों के लिए। और जो आंखें ते नेत्रे तमसो जिते सुरुचिरे याभ्याम हरिर् दृश्यते, कि जो आंखें भगवान को देख रहे हैं हमेशा, भगवान के सौंदर्य को देख रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के लीला को दर्शन कर रहे हैं, वो आंखें क्या है, वह सुरुचिरे बड़े ही सुंदर है। और ते नेत्रे तमस उज्जिते, उज्जिते मतलब त्याग करना, तमस मतलब अंधकार। तो मतलब वो कह रहे हैं कि जो आंखें भगवान का दर्शन करती है उस आंखों को अंधकार ने त्याग दिया है, मतलब अंधकार उस आंखों में उन आंखों में कभी नहीं रह सकता है, हमेशा वो स्पार्कलिंग, हमेशा वो जीवित और आकर्षक रहती है। तो आंखों का उद्देश्य क्या है, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना। जिह्वा का उद्देश्य क्या है, भगवान का गुणगान करना। तो यह तीसरा स्तर है, सर्वोच्च स्तर है कि हाँ ये भौतिक जगत ये भौतिक इंद्रिया मेरे भोग के लिए नहीं है पर ये सब भगवान की सेवा के लिए। तो ये है भक्ति मार्ग। तो जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में देयर इज विड्रॉवल फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस, कि हम जो इंद्रिय अनुभव है, इंद्र तृप्ति का अनुभव, इंद्रियों से कुछ अनुभव करना, उससे हम दूर जाने का प्रयास करते हैं। पर भक्ति मीन्स सेंसरी परस्यूट ऑफ गॉड, हम हमारे इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। इसे हम जप करते हैं तो जप ये क्या कर रहे हैं, हम इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं पर किस लिए, भगवान के करीब जाने के लिए। तो इसीलिए जो जीवन की पूर्णता है वो कब आती है, तीर्थ पद सेवा यही, जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं। और बहुत ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शब्दों में बताया गया है, अगर ये नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अगर कोई कर्म ऐसा कर रहा है जिससे धर्म नहीं, धर्म में वृद्धि नहीं हो रही है, कोई ऐसा धर्म कर रहा है जिससे वैराग्य नहीं हो रहा है, कोई ऐसा वैरागी है जिसमें भगवत भक्ति जागृत नहीं हो रही है, तो ऐसे तीनों प्रकार के लोग जो है जीवन अपि मृतोपि सह, मृतो ही सह ही, यानी सर्टनली अवश्य जरूर, कैसे लोग भले ही जीवित हो वे मृत के समान ही है। मृत के समान क्यों बताया गया है, क्योंकि जो जीवन का उद्देश्य है शाश्वत आनंद प्राप्त करना, उसकी ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं। और एक्चुअली लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि जो भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होते है न अवतारे जा रहे रति ना जन्मैया लोचन को ऐसे ही पापी एलोआ रगेलो। वो कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जो भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होता है, खास करके नित्यानंद प्रभु जो करुणा की पराकाष्ठा है, वो कहते हैं ऐसा व्यक्ति बेहतर होता कि वो जन्मते ही मर जाता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है वो जितना जीवित रहता है उतना क्या करता है, पाप कार्यों में लगता है, उससे दूसरों को दुखी करता है और खुद भी दुखी होता है। तो जीवात्मा भौतिक जगत में जो है वह एक छोटे बच्चे के समान है, जो छोटा बच्चे के समान मासूम नहीं, तो छोटा बच्चा कैसे होता है, छोटा बच्चा रोता है, और रोता है तो क्या होता है, वो खुद भी परेशान है और उसके आजू बाजू के लोग भी परेशान होते हैं उससे। तो वैसे ही हम सब सबकी अवस्था है, अगर जितने हम जिस हद तक हम भगवत भक्ति से रहित है कि हम खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी बनाते हैं। भक्ति तीर्थ महाराज कहते थे बाय आवर वेरी एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड वी बिकम अ सोर्स ऑफ मिजरी फॉर अदर्स एंड अदर्स बिकम अ सोर्स ऑफ मिजरी फॉर अस। कि हम जब भौतिक जगत में जीते हैं तो हमारे अस्तित्व के कारण ही क्या होता है, हम दूसरों के लिए दुख का कारण बनते हैं, दूसरे हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं अगर हम भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं तो इसलिए यह जो भक्ति है यही जीवन का उद्देश्य है, इसी में असली आनंद है। और इसमें हम जब इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें आनंद मिलता है, दूसरों को आनंद मिलता है। जैसे कोई जीवा भगवान का कीर्तन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस व्यक्ति को दिव्य आनंद अनुभव होता है, बाकी सब जो कीर्तन में सहभागी होते हैं उनको भी दिव्य आनंद अनुभव होता है। तो यह भारत की प्राचीन भक्ति पर आधारित संस्कृति है, और इसी संस्कृति को पुनः श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व भर में और खास करके भारत में जागृत किया है। और वही संस्कृति जो कि हमें पूरे जो इंद्रिया है, पूरा जीवन है, उसको अर्थपूर्ण उपयोग करने में मार्गदर्शन करती है, यही संस्कृति जो है आज इसकी सारी दुनिया में ज़रूरत है। तो अभी हम पुणे में एक नया मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मंदिर की जो प्राचीन वैदिक संस्कृति थी उसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी और वह कैसे आधुनिक संस्कृति में मंदिर क्या योगदान करने वाला है, उसके बारे में हम संक्षेप में अभी चर्चा करेंगे। तो कुछ 3 महीना पहले मैंने एक संडे फीस लेक्चर इंग्लिश में दिया था, तो तभी मैंने यही श्लोक लिया था। तो उस समय आप में से कितने लोग थे, दैट टाइम आई स्पोक ऑन द एक्रोनिम TEMPLE। ओके, सो यस ओनली कुछ वक्त थे, तो उस समय के कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा और कुछ और चीज़ें भी अभी बोलने का प्रयास करूँगा। तो ये जो हम जो मंदिर के 6 पहलू है उसके हम चर्चा करेंगे अभी, जो इंग्लिश में शब्द है टेम्पल TEMPLE उसके अनुसार। तो टी जो है वो है ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंस यानी आध्यात्म। तो भौतिक जगत में हर जगह भौतिक वातावरण होता है और कई बार लोगों को ऐसा पता ही नहीं चलता है कि इस भौतिक जगत के परे और कुछ है भी। ये तो वहाँ पे मुझे जाना है और वही मेरा घर है, ये तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए जो मंदिर होता है वो ऐसी जगह होती है इस भौतिक जगत में जहाँ पर लोग आध्यात्म का अनुभव कर सकते हैं। आध्यात्म का अनुभव कर सकते हैं मतलब वो समझ सकते हैं ऐसे कुछ, ऐसा वातावरण, ऐसा अनुभव, ऐसे आदान प्रदान उनको होते हैं, वो लगता है कि इस जगह के पले भी और कुछ होना चाहिए और वहीं मुझे जाना है। तो प्रभुपाद जी जो क्रिश्चियन धर्म में द किंगडम ऑफ गॉड की एक धारणा है कि जो भगवान का धाम जो है, भगवान का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, तो वो कहते हैं कि ये किंगडम ऑफ, वो कहते हैं क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि हमको वी हैव टू गो टू द किंगडम ऑफ गॉड, हमें भगवान के राज्य में जाना है. तो प्रभुपाद जी कहते इज दिस नॉट द किंगडम ऑफ गॉड, एवरीवेयर इज द किंगडम ऑफ गॉड, कि सब जगह भगवान का ही राज्य है, तो फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हमें भगवान के राज्य में जाना है. तो इसका सुंदर अर्थ बताते प्रभुपाद जी कि द किंगडम ऑफ गॉड इज द प्लेस वेयर गॉड इज एक्सेप्टेड एज द किंग. कि कौन सी जगह, भगवत धाम मतलब क्या है, वो ऐसी जगह जहां पे भगवान को स्वीकारा जाता है कि भगवान ही स्वामी है, भगवान ही राजा है. तो ये भौतिक जगत भी भगवान की ही संपत्ति है, पर यहां पे जो जीवात्माएं हैं वो भगवान को भूल गए हैं, वो सोचते हैं कि मैं ही यहां पे स्वामी हूं. ऐसे अलग अलग यूरोप के लोग जब अमेरिका में गए तो सबने क्या किया, ये अमेरिका हमारा है, ये अमेरिका हमारा है, अमेरिका का हिस्सा हमारा है, और उन्होंने अमेरिका पर कब्जा कर लिया. और वैसे ही उनके इतनी यूरो सेंटर्ड मानसिकता थी कि जब भारत में आए तो कहते डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कि हमने भारत का अन्वेषण किया, भारत की खोज की. भारत में हजारों सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, पर वो कहे हमने भारत की खोज की. तो मतलब क्या सोचते हैं वो, कि सब कुछ हमारे लिए है. ऐसे एंटार्क्टिका में चले गए तो वहाँ पे कहने लगे हाँ भैया एंटार्क्टिका मेरा है. तो वो चंद्र पे जाने की योजना करते, सोचते कि चंद्र मेरा है. बंगाल में एक व्यक्ति है जिसने अपने सारे जिंदगी के जो सेविंग्स थे लगभग 12 लाख रुपए उसने खर्च किए चंद्र पे जमीन खरीदने के लिए. चंद्र पे उसे, और उसको एक लूनार लैंड सेल कंपनी है अमेरिका में, उसने उनको चंद्र पे जमीन दी है. पर भी उसको एक ही समस्या है, वो जमीन 12 लाख की है पर चंद्र के जाने के लिए उसको 12 करोड़ लगने वाले हैं और उसके पास है नहीं. तो ये मूर्खता है. अभी वो लूनार लैंड सेल कंपनी को जमीन दी किसने कि वो कह रहे हैं हम चंद्र की जमीन को बेच रहे हैं. तो ये मूर्खता है कि जब लोग सोचते हैं कि सब कुछ हमारा है, तो भौतिक जगत में ये भाव होता है कि सब कुछ मेरा ही है. तो इसीलिए यहाँ पे भगवान को जो स्वामी है के रूप में स्वीकार किया नहीं जाता है. तो अगर कोई भौतिक जगत में ऐसी जगह हो जहाँ पे भगवान का स्वामित्व स्वीकार किया जाए तो वो किंगडम ऑफ गॉड बन जाएगा, वो भगवान की, भगवान का धाम बन जाएगा. और भागवत में भी यही कहा गया है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्तः तत्र तिष्ठामि नारद. तो यहाँ इस श्लोक में कुछ रहस्यमय चीज बताई जा रही है. भगवान बता रहे हैं नारद मुनि को कि ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूं. योगिनां हृदयेषु वा, जो योगी ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, जो योगीगण ध्यान में भगवान को देखते हैं, तो भगवान के योगीगण ध्यानावस्था में समाधि में वो भगवान को अपने हृदय में देखते हैं. पर भगवान कह रहे हैं कि मैं योगियों के हृदय में भी नहीं हूं. तो ऐसे क्यों कह रहे हैं भगवान, भगवान जरूर वैकुंठ में वास करते हैं, जरूर वो रोगियों के हृदय में है, पर क्यों कह रहे हैं भगवान, वो अगले भाग में बताते हैं. यत्र गायन्ति मद्भक्तः तत्र तिष्ठामि नारद, कि जहां पे मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं वहां पे मैं वास करता हूं. तो इसका कहने का मतलब यह है, भगवान का जरूर वैकुंठ में वास है, भगवान का जरूर योगी के हृदय में वास है, पर जन साधारण लोगों को वो अनुभव नहीं हो सकता है. भगवान वैकुंठ में हम कैसे पता चलेगा, और कोई योगी अगर ध्यान में है भगवान का दर्शन भी कर रहा है हमें कैसे पता चलेगा. पर यत्र गायन्ति मद्भक्तः, जहां पे भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. तो जहां भक्त कीर्तन करते हैं वहां पे जन साधारण व्यक्ति भी आ जाता है, उसको भी भगवान का अनुभव होता है वहां पे. अभी प्रभुपाद जी की कृपा से सारे विश्व भर में कीर्तन होते हैं. तो जब कीर्तन होते हैं तो जो लोगों को पता भी नहीं है क्यों कीर्तन चल रहा है, क्या कीर्तन चल रहा है, वो भी उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं. तो एक बार रशिया में वोल्गा नदी के बाजू में उनका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, तो वहाँ पे हरे कृष्णा भक्त वहाँ पे गए, वहाँ पे कीर्तन करने लगे, वो फेस्टिवल क्या था कि अलग अलग संस्कृति के लोग आएंगे रशिया में और वो अपने अपने फोक सॉन्ग्स गाएंगे, अपने जो पारंपरिक संगीत है वो गाएंगे। तो भक्त आ गए और अपना फोक सॉन्ग लेके आए हरे कृष्ण महामंत्र। और ये ऐसा फोक सॉन्ग, इस पूरे वहाँ पे लगभग 100 पंडाल थे, ये इकलौता ऐसा फोक सॉन्ग था जिसमें लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते थे, बाकी सब आपको सुनना है वहाँ पे और देखना है, पर यहाँ पे लोग भी गा पा रहे थे। और फिर भक्तों का प्लान था कि हम सुबह 6 बजे शुरू करें, शाम को 6 बजे शुरू करेंगे और 7-7:30 तक कीर्तन करेंगे, फिर 7:30 से 8:30 थोड़ा प्रवचन करेंगे, बाद में थोड़ा कीर्तन करेंगे, खत्म करेंगे। पर जब वो कीर्तन शुरू हो गया सैकड़ों की संख्या में लोग आने लग गए, और फिर क्या हो गया, वो जब कीर्तन बंद करने लगे तो इतना बड़ा वहाँ पे लोग था कि वो साउंड सिस्टम का आवाज़ ही पहुँचने को जब संभावना नहीं थी, और लोगों को कीर्तन की इच्छा थी और कीर्तन करना है। तो 7:30, 8, 8:30 हो गए, कीर्तन ही चलता रहा, और भी 9 बज गए, तभी बोला बहुत हो गया, पर लोग आ ही जा रहे थे और कीर्तन चल ही रहा था। वो कीर्तन बंद किया एक बार तो लोग बोले नहीं और चाहिए हमको कीर्तन, तो फिर 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बज गए, और जब 3 बजे तो जो एम्पलीफायर से सारा धुआं निकलने लगा तो फिर वो भक्त जो हमको ये बता रहे थे, तो बता रहे थे कि उस दिन हम सब उल्टे पद्धति से मंगल आरती को पहुंच गए तो फिर उसके बाद में वो थोड़ा विश्राम करके उठ के जप कर रहे थे 10-11 बजे, तो कुछ रशिया के लोग वहाँ पे आए और बोले कल की रात थी हमारी जिंदगी सबसे अच्छी रात थी, इतना आनंद मिला हमको, पर मुझे एक सवाल है, वो बोल रहे थे, वे व्यक्ति रशियन में पूछ रहे थे, और एक भक्त है रशिया के जो ट्रांसलेट कर रहे थे और ये अमेरिका के भक्त है वो जवाब दे रहे थे, बोले क्या सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम क्या गा रहे थे कल तो ये है यत्र गायन्ति मद् भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद कि व्यक्ति को समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या गा रहा हूँ, पर फिर भी जब जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पे दिव्य आनंद होता है। प्रभुपाद जी का एक कंथ आनंद सागर श्री कृष्ण, प्रेम सागर, आनंद सागर, तो उनको वो आनंद, वो प्रेम अनुभव हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो वास्तव में जो जहाँ पे भगवान का गुणगान होता है वह एक वह आध्यात्मिक जगत बन जाता है, और प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो मंदिर हो वह भी क्या हो, वहाँ पे भगवान का गुणगान हो। तो भारत में अनेक मंदिर हैं, पर ऐसे अनेक मंदिरों में दुर्भाग्यवश भगवान का गुणगान नहीं होता है, तो लोग आते हैं घंटे बजाते हैं, दर्शन लेते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं, पर क्योंकि वो भगवान का गुणगान नहीं हो रहा है तो लोगों के जीवन, उनको भगवान की अनुभूति नहीं होती है बहुत ही प्रभावशाली पद्धति से, उसके कारण उनको जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी बोला करते हमको मंदिर ज़रूरत क्यों है, हमें भगवान का गुणगान करना है और भगवान का गुणगान करने के लिए कोई जगह चाहिए, तो इसीलिए हमको मंदिर चाहिए। तो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए दो प्रकार के विधियाँ होती हैं, एक है पंचरात्र विधि और दूसरी है भागवत विधि। तो भागवत विधि मतलब श्रवण कीर्तन, तो अभी हम जो कर रहे हैं भगवान का गुणगान करना और उसका श्रवण करना, तो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जो कर रहे थे वो है भागवत विधि। तो जो गौड़ी वैष्णव आचार्य है कलयुग के लिए विशेषकर उपयुक्त जो है वो भागवत विधि है। तो फिर भी हम देखते हैं प्रभुपाद जी सारे विश्वभर में मंदिर बनाए हैं, तो प्रभुपाद बोलते मंदिर हमने बनाए क्यों है, क्योंकि जो भागवत विधि है श्रवण कीर्तन वह उसको जारी रखने के लिए उसके लिए एक सुविधा चाहिए, तो इसके लिए हमको मंदिर चाहिए। तो जहाँ पे भगवान का श्रवण कीर्तन होगा वहाँ पे दिव्य अनुभूति होगी, और जब दिव्य अनुभूति होगी तो फिर उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा। तो हम देखते हैं अभी जो हमारा कैंप में मंदिर है वो वास्तव में आर्किटेक्चर जो शिल्पशास्त्र है उसके अनुसार देखा जाए तो ये मंदिर नहीं है, ये केवल एक बंगले जैसा है, पर यहाँ पे क्योंकि भगवान का गुणगान हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे जो इतने सारे भक्त आ रहे हैं वो अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। शायद ही भारत संपूर्ण पूना में ऐसा और कोई मंदिर होगा जहाँ पे भक्ति इतनी प्रभावशाली पद्धति से अनुभव की जा सकती है और उतना हृदय में परिवर्तन हो सकता है। तो हमें भागवत विधि का अनुसंधान करने के लिए हमें हम मंदिर बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें दिव्य अनुभव होता है जब श्रवण कीर्तन होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे दिस इज लाइक दी एम्बेसी ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि जो आध्यात्मिक जगत जो है, जैसे अमेरिका है तो अमेरिका की एक एम्बेसी होती है, अमेरिका का एक प्रतिनिधित्व घर होता है भारत में, तो वहां पे जाते हैं लोग और वहां पे सब कुछ अमेरिका के जैसा होता है, वहां के कार्स, वहां के लिफ्ट्स, वहां के दरवाजे सब कुछ अमेरिका जैसे होते हैं। तो फिर वहां वैसे वहां पे जाके क्या होता है, लोगों की अमेरिका में जाने की इच्छा बढ़ जाती है। तो वैसे जब मंदिर में आते हैं लोग तो आध्यात्मिक जगत का अनुभव जब करते हैं कि एक झलक प्राप्त करते हैं तो फिर आध्यात्मिक जगत जाने की इच्छा होती है। तो ये सबसे पहला उद्देश्य है कि एक दिव्य अनुभूति लोगों को प्रदान करना। फिर इज एजुकेशन, कि प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो मंदिर है वो इट शुड बी अ सेंटर फॉर हायर एजुकेशन, इट शुड बी लाइक अ यूनिवर्सिटी। कि जो मंदिर में दिव्य ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, उससे लोग जो जीवन का उद्देश्य है उसकी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर उस उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो वास्तव में जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसमें जब भी कोई मंदिर होता था उसमें ज़रूर वहाँ पे कोई संत या महान पंडित ब्राह्मण वहाँ पे होते थे और मंदिर के बाजू में ही मंदिर के प्रांगण में हमेशा भगवत कथा चलती थी और लोग भगवान का दर्शन भी देते थे और आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करते थे। तो ये जो शिक्षण, आध्यात्मिक शिक्षण देना, यह एक मंदिर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आजकल हम देखते हैं जो आधुनिक विज्ञान, आधुनिक शिक्षण पद्धति है उसे बहुत सा ज्ञान दिया जाता है पर वह ज्ञान केवल भौतिक होता है। तो भौतिक ज्ञान के कारण क्या होता है, हम भौतिक चीज़ों को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं पर क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो हम खुद को, हम खुद आत्मा है, खुद हम आध्यात्मिक जीव है तो हम खुद को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। कलयुग ऐसे आधुनिक युग की क्या परिस्थिति बताई गई है, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स एंड मिसगाइडेड मैन। हमने हमको अंतर्ज्ञान प्राप्त किया हमने टेक्नोलॉजी, उससे क्या करें, हम दुनिया को नियंत्रित कर रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं पर खुद को नियंत्रण नहीं कर पा रहे। जो WTC में एयरप्लेन चला गया था तो वो क्या था, एक गाइडेड मिसाइल था पर उसके जो उसको किडनैप जिन्होंने किया था वो मिसगाइडेड मैन थे, गुमराह हुए लोग थे। या फिर दूसरे से कहा जाता है कि आज के आधुनिक संस्कृति शिक्षण पद्धति के कारण क्या हुआ है, वी हैव न्यूक्लियर जायंट्स एंड इमोशनल इन्फेंट्स। कि हमको क्या हुआ है, इतने ऐसी अणुशक्ति, परमाणु शक्ति हमने प्राप्त की है कि बहुत शक्तिशाली बन गए अनेक देश। ऐसा अनुमान है, वास्तव में किसी को पता नहीं है, ऐसा अनुमान है कि सारे विश्व के लोगों के पास, देशों के पास इतना परमाणु हथियार है कि संपूर्ण विश्व को 1,000,000 times 1,000,000 times हम विध्वंस कर सकते हैं, इतनी शक्ति प्राप्त की है। पर क्या है, इमोशनल इन्फ्लुएंस, इमोशनल इन्फ्लुएंस मतलब भावनाओं के साथ कैसे कार्य करना है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे वार्तालाप करना चाहिए, कैसे थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, कैसे हमें सहनशील रहना चाहिए, सेंसिटिविटी, टॉलरेंस, ये सब गुण लोगों में नहीं है। उसके कारण क्या होता है, छोटे छोटे चीज़ों पर लोग इतना उपद्रव कर देते हैं। आप में से अनेक लोगों को पता होगा कि अमेरिका की एक बहुत ही नामवंत यूनिवर्सिटी है वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी नाम की, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक विद्यार्थी था वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना हताश हो गया कि उसने एक बंदूक ले ली और जो भी दिखा उसको गोली मारने लग गया, तो कई डजन लोगों को उसने मार डाला। एक भारत के भी एक विद्यार्थिनी थी, एक भारत का एक प्रोफेसर थे, वो भी उसमें उनका भी देहांत हो गया और बाद में ये व्यक्ति ने खुद को मार डाला। तो उसके बाद में अमेरिका के सब विचारवंतों ने ऐसे चर्चा की ऐसे क्यों हो रहा है कि ऐसे लोग, और ये एक ही श्रृंखला इसके पहले लिटिलटन में हुआ था, अलग जगह पे ऐसे हो रहा है कि विद्यार्थी बंदूकों को लेकर खुद को, पहले दूसरों को मार डालते फिर खुद को मार डालते हैं। तो फिर ये सब विचारवंतों ने फिर क्या निष्कर्ष निकाला कि हमको अभी अमेरिका एक ऐसा, उसमें एक विचित्र नियम है कि जो भी बंदूक प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। भारत में कोई बंदूक रखना चाहता है तो पुलिस ही रख सकते हैं या फिर जो गैर कानूनी लोग रख सकते हैं, पर कानूनी तौर पर जो भी चाहे वो बंदूक रख सकता है। और उनका कहना क्या है, अगर कोई हमको हमला करेगा तो हम ये बंदूक इस्तेमाल करेंगे खुद के संरक्षण के लिए। तो लाखों लाखों की मात्रा में हर साल बंदूक उस वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं एंड अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डोमेस्टिक वायलेंस रेट, कि अंतरंग जो हिंसा होती है, बंदूक ज़्यादा है तो लोग हिंसा भी ज़्यादा करते हैं। तो अभी मतलब इस विद्यार्थी के पास बंदूक आई क्यों, क्योंकि अमेरिका में आसानी से आपको बंदूक प्राप्त होते हैं। पर ये अमेरिका के विचारवंतों ने क्या निष्कर्ष निकाला, इस प्रकार के हादसे पुनः न हो इसलिए सब लोगों को बंदूक देना चाहिए। क्या विचार है भाई? वो कह रहे और सब लोगों के पास बंदूक होगा तो ऐसा कोई व्यक्ति पागल होगा तो वो ज्यादा लोगों के मारने के पहले कोई और उसको मार डालेगा। तो भगवद्गीता में कहते हैं सर्वार्थान विपरीताम च सा बुद्धि तामसी, कि क्या होते हैं बिल्कुल उल्टा निष्कर्ष निकालते हैं, ये तामसी बुद्धि है। तो वास्तव में क्या हो रहा है कि व्यक्तियों को इमोशनल इन्फेंट्स, खुद की भावनाओं को कैसे नियंत्रण करना है, कैसे खुद को सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रित करना है, ये सिखाया नहीं जाता है। इसके कारण वो अनियंत्रित हो जाते हैं और अनियंत्रित हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो इस प्रकार की हिंसा कर लेते हैं। तो अभी उसके लिए आपको हम आध्यात्मिक शिक्षण देना चाहिए, पर आध्यात्मिक शिक्षण देने के छोड़ो उनको और बंदूक देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे हम IIT में प्रवचन देते हैं तो IIT मुंबई में ये दुर्भाग्य की बात है कि हर सेमेस्टर में 2-3 विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं। तो भी IIT का मैनेजमेंट भी साथ में आया और उन्हें विचार किया कि ये क्यों विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि एक पैटर्न है, एक पद्धति है जिससे सब विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। क्या है? वे फैन से खुद को लटका देते हैं और फिर फैन चालू कर देते हैं। तो IIT के सब टॉप मैनेजर्स, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, वो सब साथ में आए, मीटिंग में उन्होंने फैसला किया कि हमको अगर आत्महत्या बंद करनी है तो सब फैंस निकाल दो और AC लगा दो। और कई करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन भी हो गए क्योंकि वहां पे हजारों सैकड़ों में रूम्स है तो सब में AC बिठाना। तो अभी ऐसा नहीं कि फैन है इसलिए लोग आत्महत्या कर रहे, लोग हताश हो गए, वो खुद के जीवन में कैसे जीना है पता नहीं है। तो प्रोपा जी जब अमेरिका में गए तो वो कह रहे थे तुम्हारे क्या तंत्र ज्ञान है, तुम बड़े बड़े इमारतें बनाते हो फिर उसके ऊपर चढ़ के खुद के आत्महत्या कर लेते हो। तो यह है आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव। ये सब जो हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। अभी ये बहुत ही इट इज बोथ कॉमिक एंड ट्रेजिक, ये हास्यास्पद और ये बहुत दुर्भाग्यवश बात है कि संपूर्ण पृथ्वी पे 64 लाख योनियां हैं, 8.4 मिलियन स्पीशीज आ देर, पर इसमें से केवल मानव ही आत्महत्या करते हैं और कोई आत्महत्या नहीं करता है। सबसे बुद्धिमान लोग हैं वही आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो क्या जानवरों को आध्यात्मिक ज्ञान की क्षमता ही नहीं है, इसलिए वो उनको कुछ सवाल नहीं होता है, वो जीते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं और फिर उनका अंत हो जाता है। पर मानव आध्यात्मिक ज्ञान की क्षमता है, जब उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता है तो फिर जीवन के जो अप्स एंड डाउन्स है, जो सुख दुख आते हैं, उसको कैसे सामना करना है वो लोगों को पता नहीं चलता, इसलिए पूरी तरह से हताश हो जाते हैं वो। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जहाँ भी मंदिर शुरू किए, मंदिर शुरू करने के पहले ही वहाँ पे वो प्रचार शुरू करते थे। प्रभुपाद जी के भारत में अनेक जगह भागवत सप्ताह होते हैं, अनेक भागवत के तात्पर्य लिखे हैं लोगों ने। प्रभुपाद जी जब भारत में थे वो उस समय एक अनजान साधु थे, वो दिल्ली के सड़कों पे घूम रहे थे तभी, और तब उन्होंने भागवतम के प्रथम स्कंद के तात्पर्य लिखा। तब उन्होंने जो विख्यात श्लोक जो अभी हमने शुरुआत में गाया, नित्यम भागवत सेवया, तो इस नित्यम भागवत सेवया उसका प्रभुपाद जी ने क्या ट्रांसलेशन किया तभी, बाय डेली अटेंडेंस एट द भागवतम क्लासेस, कि रोज अगर भागवत के क्लास में अगर आप उपस्थित रहते हो तो फिर नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे अभद्र हमारे जीवन से चले जाएंगे। तो उस समय ना तो कोई मंदिर थे, ना तो कोई भागवतम क्लास थे, ना तो कोई भागवतम तात्पर्य थे, सिर्फ प्रभुपाद जी का एक दिव्य विजन था, उनकी अभिलाषा थी कि ऐसे होगा भविष्य में। तो प्रभुपाद जी ये संपूर्ण विश्व के, हिंदू ही नहीं सब धार्मिक संस्थाओं में इस्कॉन ये बहुत विशेष है कि रोज एक भागवतम क्लास होता है, और कई मंदिरों में तो ब्रह्मचारी क्लास होता है, भगवद्गीता क्लास भी होता है, हमारे मंदिर में तीनों होता है। तो ये इस्कॉन इज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो इसीलिए ये टेम्पल जो है ये प्रधान इसका एक प्रधान उद्देश्य है कि एजुकेशन देना। और समथिंग मोर अबाउट दिस पॉइंट विच आई स्पीक इन कनेक्शन विद द नेक्स्ट पॉइंट। M इज मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस यानी विशालता। तो जो मंदिर है वह कई बार लोग कहते हैं हाँ मंदिर बनाओ, पर इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, अभी भगवान को बड़ी जगह जरूरत नहीं है, छोटा मंदिर बनाओ और भगवान की पूजा करो। वो लोग क्या दिखा देते, हम बहुत सज्जन हैं, हम नहीं कह रहे कि हम नास्तिक है, पर इतना बड़ा मंदिर आप ये संगमरमर मार्बल क्यों रखना चाहते हो वहाँ पे, छोटा सा मंदिर बनाओ। तो यह जो है भगवान की महिमा को हम ठीक तरह समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान सबसे बड़े व्यक्ति हैं, और अगर कोई बहुत रईस व्यक्ति आता है तो वो एक कोई रईस व्यक्ति आएगा, भारत के प्रधानमंत्री आएंगे तो वो साइकिल पे साइकिलिंग करते नहीं आएंगे, वो उनके कार में आएंगे, ना तो वो एक कार में आएंगे, उनके पीछे पांच कार हो गए, आगे पांच कार हो गए, शायद ऊपर एक एयरप्लेन भी होगा। तो क्या है, जो व्यक्ति अगर महान होता है तो उसको जो फैसिलिटीज दी जाती है वो भी महान होती है, उसकी श्रेणी उसके दर्जे के अनुसार ही होती है वो फैसिलिटीज। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। तो एक प्रधानमंत्री है ये तो सिर्फ एक देश के है, पर एक खंड, एक पृथ्वी, अनेक ग्रह, ऐसे अनेक ब्रह्मांड, उन सब के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान। तो उनके लिए जो मंदिर बनाया गया वो छोटा सा कैसे हो सकता है। ये तत्व ज्ञान की ओर से हो गया, पर एक व्यावहारिक दृष्टि से भी क्या होता है, अधिकांश लोगों की चेतना भौतिक होती है। तो कई बार ऐसे होता है कोई व्यक्ति अगर एक मार्केट में आता है तो लोग सबसे पहले देखते हैं जो वहाँ पे ग्राहक होते हैं तो कैसे आ रहा है, कौन से कार में आ रहा है। अगर बहुत महंगी कार है तो सोचते हैं अरे ये बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, कोई साधारण बाइक पे आ सोचते साधारण व्यक्ति होना चाहिए। तो मतलब क्या, क्योंकि लोगों की चेतना भौतिक होती है तो वो भौतिक दृष्टि से देखते हैं और व्यक्ति की जो महिमा है उसको उस प्रकार से नापते हैं। साधारण व्यक्ति गाड़ी में आ रहा है तो साधारण व्यक्ति होना चाहिए, बड़ी गाड़ी में आ रहा है तो बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। तो अभी भगवान की महिमा लोगों को समझाने के लिए अगर भगवान का मंदिर बहुत बड़ा होगा तो लोग सोचेंगे अरे ये जिस व्यक्ति का इतना बड़ा मंदिर है वो व्यक्ति कितना बड़ा होना चाहिए। तो केशु केशु च भावेशु, अर्जुन भगवान को पूछते हैं ये इस भौतिक जगत में कैसे मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ। तो भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं, विभूति योग अध्याय में, कि जहाँ भी आप विभूति देखते हैं आप मेरा स्मरण कर सकते हैं। तो इसीलिए वैदिक संस्कृति में जो भगवान के मंदिर होते थे बड़े विशाल होते थे। अगर हम जयपुर में जाते हैं तो जयपुर में सबसे बड़े जो सबसे बड़ा जो इमारत है वो राजमहल है, पर राजमहल से भी बड़े इमारत जो है वो है राधा गोविंद जी का महल, उनका मंदिर है। क्यों? क्योंकि राजा बड़ा व्यक्ति है, वो नरदेव है, पर भगवान स्वयं भगवान है तो उनका मंदिर उससे ही बड़ा होता है। तो जब औरंगजेब ने अपना विशाल महल बनाया था आगरा में, तो उसको उसने सोचा कि मेरा ये महल सबसे बड़ा होना चाहिए, और फिर अपने महल के ऊपर गया और ऊंचा था काफ़ी, उस समय कोई स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग नहीं थे, और फिर अपने महल के टेरेस पे गया और उसने देखा दूर उसको उसके महल से बड़ा कोई और महल दिख रहा था। तो क्या है, उसने सोचा, अपने सब सैनिकों को बुलाया, क्या है ये, बोले, उन्हें बताया उसको कि ये राधा गोविंद जी का मंदिर है। सो उस समय सात महल का था, सात विशाल महल का। तो ये मतलब जो मुगल शहंशाह था उसके महल से बड़ा भगवान का मंदिर था। ये भारत की संस्कृति है, जिससे कि जो आध्यात्मिकवादी जो लोग हैं वो छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो वैसे भी आए गए। अभी आप सब आध्यात्मिकवादी हो तो भले ही यहाँ पे मंदिर नहीं है, एक तरह से भौतिक दृष्टि से कोई मंदिर का शिल्प नहीं है, फिर भी आप सब आ रहे हो। पर जो भौतिकवादी लोग हैं उनका कल्याण कैसे होगा, उनके कल्याण के लिए ज़रूरी है कि एक आलीशान मंदिर हो। तो प्रभुपाद जी जब हांगकांग में गए थे तो एक बार वो एक वहाँ का एक 5-star होटल है, हिल्टन होटल, उसमें वो रह रहे थे, और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया उन्होंने। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया तब कई रिपोर्टर्स वहाँ पे आ गए, बड़े बड़े सब न्यूज़पेपर्स के रिपोर्टर्स आ गए और अलग अलग सवाल पूछने लग गए। और फिर वो एक ने सवाल पूछा, स्वामी जी आप कह रहे हो कि वैराग्य होना चाहिए, हमें भौतिक जगत का भोग नहीं करना चाहिए, पर आप ये हिल्टन होटल में रह के बता रहे हो हमको, क्या ये उचित है? प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं तो एक पेड़ के नीचे भी रह सकता हूँ, पर अगर मैं पेड़ के नीचे रह के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला तो क्या आप आते थे वहाँ पे? तो फिर वो व्यक्ति समझ गया वहाँ पे। तो ये बड़ा मंदिर हमारे लिए नहीं है, बड़ा मंदिर यह भगवान के गुणगान के लिए है, और जो भौतिकवादी लोग हैं उनको आकर्षित करने के लिए है। तो आध्यात्मिकवादी लोग वैसे भी आ जाएंगे, पर ऐसे हमारी ऐसे संत भाव नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिकवादी जो लोग हैं उनका ही कल्याण होना, भौतिकवादी लोग हैं उनका भी कल्याण होना चाहिए। तो जुहू, दिल्ली आदि जगह, हैदराबाद, बैंगलोर, जहाँ पे बड़े बड़े मंदिर है वहाँ पे लोग वो मंदिर देखने के लिए आते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए आते, मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो देखने के लिए आते हैं। पर उसके बाद भगवान का दर्शन हो जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र सुनने को मिलता है, कुछ ग्रंथ मिल जाते हैं, प्रसाद मिल जाता है, तो उनके आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो जाते हैं वो। तो इसलिए ये वैदिक संस्कृति का अविभाज्य अंग था कि भगवान का मंदिर आलिशान होता था। तो अभी ये आलिशान मंदिर साधारणतः बनता कैसे था? तो वैदिक संस्कृति में जो जो ब्राह्मण होते थे वो भगवान की पूजा करते थे और भगवान का यजन याजन पठन पाठन दान परिग्रह और भगवान का संदेश देते थे। तो उस समय जो राजा होते थे वो राजा खुद का एक धार्मिक कर्तव्य मानते थे कि मुझे बड़ा मंदिर बनाना चाहिए। और आजकल कैसे लोगों का गर्व होता कि मैंने मेरा इतना बड़ा इमारत बनाया, पर वो वैदिक संस्कृति में वो धार्मिक गर्व होता था कि मैंने भगवान के लिए इतना बड़ा मंदिर बनाया। तो भारत के जो अधिकांश बड़े मंदिर हैं, जो श्रीरंगम का मंदिर है, तंजौर या अलग अनेक जो विशाल मंदिर है, वो बड़े बड़े राजाओं ने ही बनाए हैं। और ये राजा जब अपना अपने सारे जो राज खजाना था वो भगवान का मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और फिर राजा बड़े मंदिर बनाते थे और जो अनेक जो रईस व्यक्ति होते थे, जो बिजनेसमैन, जो व्यापारी होते थे, वो भगवान को के मंदिर को दान में अपनी ज़मीन दे देते थे कि ये ज़मीन मैं विग्रहों को देता हूँ। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं EMM जो है, इसकी सकाले ने हमता योगो नष्ठा परंतु, इसकी ग्लानी कैसे हो गई, इसकी हम थोड़ा ऐतिहासिक रूप से चर्चा करेंगे अभी। तो भारत में अगर AL भश्याम का हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर द वंडर दैट वॉज इंडिया ये ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो भारत में लाखों में मंदिर थे, लाखों की संख्या में मंदिर थे। वृंदावन एक जगह में द लैंड ऑफ 5000 टेम्पल्स, छोटी जगह है पर उसमें 5000 मंदिर है। और भारत में लाखों लाखों की संख्या में मंदिर थे। पर क्या हुआ, कई चीज़ें हुई। इसका शुरुआत जो थी, जब श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को शाप दिया तो उससे जो ब्राह्मण वर्ग था उनकी ग्लानी शुरू हो गई। और जो ब्राह्मण वर्ग का पवित्र जैसे कम हो गया तो जो ब्राह्मणों का उदाहरण देखकर ही क्षत्रिय धर्मनिष्ठ रहते थे। क्षत्रिय देखते थे कि ये ब्राह्मण लोग इतने बुद्धिमान हैं पर ये भौतिक भोग में रुचि नहीं रख रहे, ये भगवान में रुचि रख रहे, मतलब ज़रूर भगवान में ज़्यादा आनंद होगा भौतिक भोग से। पर अगर जब ब्राह्मण जो थे वो ही थोड़े भौतिकवादी बन गए तो राजा लोग भी भौतिकवादी बन गए। और फिर जो भगवान का संरक्षण था, भगवान का जो शक्ति उनको था, वो धीरे धीरे कम हो गया। और उसके कारण जब पश्चिम से जब मुगल लोगों ने आक्रमण शुरू कर दिया तो कुछ समय तक उन्हें प्रतिकार किया उसका। तो पृथ्वीराज चौहान ने कई बार मोहम्मद गजनी को हराया पर 18वें बार उसको हार गया। वो पहला राजा था, पहली बार मुगल लोगों ने भारत में आक्रमण किया। और वो जो थे, क्योंकि उस समय इस्लाम की शुरुआत अभी अभी हुई थी तो उनमें बहुत रिलीजियस फर्वर था, धार्मिक बहुत जोश था उस समय। ऑफकोर्स वो अज्ञान पर आधारित था और उनकी क्या इच्छा थी कि सब विश्व मुसलमान बनना चाहिए और जो भी दूसरा धर्म है उसका नाश करना चाहिए। जो मुसलमान लोग भारत में आए उन्होंने अनेक मंदिरों का विध्वंस किया। और उसके बाद तो मुसलमान लोगों का राज लगभग 700-800 से उन्होंने आना शुरू किया। 1200-1300 में लगभग पूरे बंगाल तक वो पहुंच गए थे। और जो मुगल राजा थे, बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक जो आगे, वो सब 1400-1500 से आने लग गए। तो अकबर जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के समय ही थे। तो अकबर जो था वो काफ़ी रिलीजियसली टॉलरेंट। अकबर ने कई कविताएं लिखी जहाँ पे वो चैतन्य महाप्रभु गुणगान करता है। पर उसके बाद में जो राजा थे, खास करके औरंगजेब, वो ही वॉज वेरी इंटॉलरेंट। तो उन्होंने अनेक मंदिरों का नाश किया पर फिर भी उससे भारत की जो वैदिक संस्कृति थी उसका नाश नहीं हुआ। मंदिर नहीं रहे पर लोग बिल्कुल धर्मनिष्ठ थे। सो द मुस्लिम्स डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स बट द ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड द फेथ दैट मेड पीपल गो टू द टेम्पल्स। जो ब्रिटिश लोग उसके बाद में आए, अंग्रेज लोग, वो उन्होंने क्या किया, वो कूटनीति में निपुण थे, वो संख्या में बहुत कम थे और जानते थे कि हम जबरदस्ती से भारत पर ज़्यादा समय तक राज्य नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सारे वैदिक ग्रंथ थे जैसे कि जो पुराण, भागवतम, महाभारत, इन सब का उन्होंने अपने बड़े बड़े विद्वान लोग थे, मैक्स म्यूलर, HH विलियम्स, HH जोन्स, ऐसे बाकी सब लोगों को उन्होंने नियोजित किया कि आप संस्कृत पढ़ो, आप संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करो और फिर उसका भाषांतर करो, पर भाषांतर इस तरह से करो कि उसको गलत भाषांतर करो, फॉल्स इंटरप्रिटेशन, जिससे कि भारतीय लोगों की अपने ग्रंथों में श्रद्धा चली जाएगी। तो अभी एक ओर से क्या हो रहा था, कि श्रृंगी के समय से ही ब्राह्मण लोग उनके शुद्धता में कम हो गए थे। इसीलिए जो हमारा आध्यात्मिक संस्कृति की नींव है कि तत्व ज्ञान है, वो लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, पर फिर भी संस्कृति इतनी थी कि लोग फिर भी धर्म का पालन कर रहे थे। पर जब ये ब्रिटिश लोग भारत में आ गए, जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में आ गया, तो फिर उन्होंने भारत में इंग्लिश एजुकेशन शुरू किया। और भारत के सब इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिमान लोग थे, वो सब वो अंग्रेजी स्कूल में जाके सीखने लग गए। और वहाँ पे वो ब्रिटिश लोग भी बड़े चालाक थे। ये कहा गया कि आप हमारी बाइबल सीख सकते हो, आप हमारे स्कूल में सीख रहे हो तो आपको बाइबल भी सीखना, बाइबल सीखना चाहिए, पर हम कोई धर्म के बारे में आपको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, पर आप आपके भी ग्रंथ सीख सकते हो, आप भागवत भी पढ़ सकते हो, महाभारत भी पढ़ सकते हो, रामायण भी पढ़ सकते हो, और आप बाइबल भी पढ़ो। पर जो पढ़ाई का माध्यम था वो था इंग्लिश। और अभी इंग्लिश में भागवतम या महाभारत रामायण किसने लिखा था? सिर्फ अंग्रेजी तात्पर्य, अंग्रेजी भाषांतर किया हुआ था, पाश्चात्य देशों के लोगों ने लिखा था। तो उसके कारण जो भी भारतीय लोगों ने हमारी वैदिक संस्कृति पढ़ी, तो उसमें क्या हो गया, वो अपने ही भारतीय संस्कृति के बारे में उनका आदर कम होने लग गया। और खास करके भारत के स्वतंत्र युद्ध में भी अनेक लोग ऐसे थे जो खुद को आध्यात्मिक मानते थे, पर उन सब ने अपने आध्यात्मिकता की जो संकल्पना थी वो अंग्रेजी शिक्षण से प्राप्त की थी। इसके कारण वो सब अधिकांश रूप से इम्पर्सनलिस्टिक बन गए, निर्विशेषवादी बन गए। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति, भगवत भक्ति नहीं रही। और उसके कारण धीरे धीरे अगर भगवत भक्ति नहीं है तो सिर्फ जैसे मैं पहले बताया था, ये दूसरा स्तर कि सिर्फ आपको त्याग करना है, पर सकारात्मक कुछ नहीं है, तो ज़्यादा रुचि नहीं रहती है भक्ति में। जब भगवान की सेवा करते, अगर मान लीजिए, अगर अभी आप जैसे आप अनेक भक्त दीक्षित है, अगर हमको दीक्षा के समय बोला जाए कि 2 घंटे आपको रोज चुपचाप बैठना है, कुछ भी करना नहीं, जब करना बड़ा मुश्किल लगता है, पर 2 घंटा रोज चुपचाप बैठने की साधना बोलो, और मुश्किल हो जाएगी वो। चुपचाप बैठना है, उठना नहीं, चलना नहीं और सोना नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब हम भगवान को जानते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो उससे आध्यात्मिक जीवन में रुचि आती है। पर जब भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, केवल ज्ञान के स्तर पर है, निर्विशेषवाद के स्तर पर है, तो फिर आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं आती है। इम्पर्सनलिज्म मेक्स मटीरियल लाइफ अपियर मोर अट्रैक्टिव देन स्पिरिचुअल लाइफ। कि जो मायावाद है उससे क्या लगता है, भौतिक जीवन ज़्यादा आकर्षक लगता है आध्यात्मिक जीवन से। और उसके कारण क्या हो गया, धीरे धीरे जो प्राचीन संस्कृति भारत में थी जनसाधारण लोगों में, उसकी भी ग्लानि होने लगी। यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसे सारे जो बुद्धिमान, जो इंटेलेक्चुअल से तथाकथित, वे जब निर्विशेषवाद और भौतिकवाद की ओर जाने लग गए, तो भारत का समान संपूर्ण समाज भी उसी ओर जाने लग गया। और फिर उसके बाद में बड़ी संघर्ष करके भारत ने अंग्रेजों को बाहर भेज दिया, निकाल दिया। बट ऑन August 15, 1947 इंडिया इंडिपेंडेंटली बिकेम डिपेंडेंट ऑन द वेस्ट। भारत ने स्वतंत्र रूप से पाश्चात्य संस्कृति पर परतंत्रता स्वीकार कर ली। पॉलिटिकली फ्री इंडिया बिकेम अ कल्चरल स्लेव ऑफ द वेस्ट। राजनीतिक रूप से हम स्वतंत्र बन गए, पर सांस्कृतिक रूप से हमने सारी पाश्चात्य संस्कृति ही स्वीकार की। और उसके कारण क्या हुआ, धर्म की ग्लानी और बढ़ती गई। और फिर भी जो काफ़ी विशाल मंदिर बचे थे, तो जो मुगल थे उन्होंने अनेक दक्षिण में, पूर्व पश्चिम, उत्तर में उन्होंने आक्रमण किया, और उत्तर में अनेक मंदिरों का विध्वंस किया। पर जो दक्षिण में थे अभी भी बड़े मंदिर है, क्योंकि वहाँ पे उतना मुगल लोग पहुँचे नहीं थे। पर वहाँ पे क्या, अभी दक्षिण में ज़्यादा जगह इम्पर्सनलिज्म है, मायावाद है, शुद्ध भक्ति भगवान की नहीं है, कि वहाँ पे अंग्रेज लोगों का काफ़ी प्रभाव हो गया था। फिर भी भारतीय संस्कृति काफ़ी अच्छी थी स्वतंत्रता के बाद भी। पर उसके बाद में जब इमरजेंसी घोषित की थी 1970s में, तब क्या सरकार ने एक लैंड सीलिंग्स एक्ट बनाया। लैंड सीलिंग्स एक्ट मतलब क्या, कि एक निर्धारित मात्रा के अगर किसी के पास भी ज़मीन होगी तो ज़मीन सरकार ले लेगी और गरीब लोगों को दे देगी। और ये था कि भारत में कई लोग बहुत अमीर थे और कुछ लोग, अनेक लोग बहुत गरीब थे, तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए उन्होंने किया था, कि हमें आर्थिक समानता लाने के लिए। पर क्योंकि भारत की सरकार काफी हद तक दे हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदुइज्म, उनका हिंदू धर्म के ओर नकारात्मक भाव है. तो उन्होंने क्या किया, सारे मंदिरों को इस लैंड सीलिंग एक्ट में डाल दिया. और क्योंकि सब चर्च और जो मॉस्क थे वो माइनॉरिटी रिलीजन्स थे, तो इसलिए उनको लैंड सीलिंग एक्ट में नहीं डाला. तो मतलब क्या, अभी भारत में द बिगेस्ट लैंड होल्डर इज द चर्च, कि सबसे ज़्यादा जमीन अगर किसी एक संस्था के पास है वो है क्रिश्चियन चर्च के पास. तो उस समय जो 1972 की बात है, कि अनेक मंदिर कैसे चलते थे उस समय, कि जो ब्राह्मण होते थे वो भगवान की पूजा करते थे और भगवान का संदेश देते थे लोगों को. ज़्यादा हद तक प्रचार नहीं था, पर थोड़ा बहुत तो प्रचार चल रहा था, संस्कृति चल रही थी. और फिर ये ब्राह्मण लोग, अभी भगवान की अगर सेवा करनी है, अगर हमारे मंदिर में हम देखते हैं तो 6 बार भगवान को भोग लगाया जाता है. तो जो पुजारी ब्राह्मण ऐसे सेवा कर रहे हैं और शास्त्रों का अध्ययन करना है, उसका उसको सिखाना है, तो इट रिक्वायर्स फुल टाइम एंगेजमेंट. तो उसको पूरा दिन पूरा समय देना पड़ता है. तो उस समय तो, और ये जो अधिकांश ब्राह्मण थे वो ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं होते थे, वो गृहस्थी होते थे. तो उनका आर्थिक निवारण कैसे होता था, कि जो विग्रह थे, जो बड़े बड़े जमींदार या राजा, वो मंदिरों को जमीन डोनेट कर देते थे, ये जमीन जो है ये भगवान की है. और फिर उस जमीन पर कुछ टिलर्स, कुछ मजदूर होते थे जो वहाँ पे खेती करते थे, और जो भी वहाँ पे अनाज उगता था वो भगवान को भोग में लगाया जाता था, और उससे भगवान को भोग लगा के प्रसाद मिलता था. और उस अनाज से जो भी लोग मंदिर में आते थे उनको प्रसाद देते थे, और जो ब्राह्मण वर्ग थे उनका भी उधर निर्वाह होता था, और जो मजदूर थे उनको भी खाना मिल जाता था. पर अभी जब ये लैंड सीलिंग एक्ट आ गया तो क्या हो गया, सारी जमीन जो मंदिरों के नाम से चली गई. और क्या हो गया, जो मजदूर थे जो मंदिर के जमीन पर सेवा कर रहे थे उनको सारी जमीन चली गई, और जो ब्राह्मण थे जो भगवान की पूजा कर रहे थे उनको अभी अपने जीवन चलाने के लिए कोई मार्ग ही नहीं था. तो ये इसका खास करके दक्षिण भारत में अनेक श्री वैष्णव है ऐसे, बड़े प्रामाणिक रूप से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, पर उनको कोई मार्ग ही नहीं है, उनको भी अपना आर्थिक जीवन चलाना है. तो इसलिए अभी क्या होता है, ये जो अभी जो ब्राह्मण है उनको, अगर अपना जो ब्राह्मण है पुजारी है उनको अपना जीवन भी चलाना है, मंदिर में भक्ति भी करनी, भगवान की भक्ति करनी है, दोनों करना है. तो ऐसे अनेक ब्राह्मण थे वो क्या हो गए, वो उन्होंने अपनी भगवान की भक्ति छोड़ दी, और या तो वो IAS ऑफिसर्स में टॉप, वो बुद्धिमान लोग थे सब, तो वो IAS ऑफिसर्स में टॉप लेवल में चले गए या अमेरिका में चले गए. तो अभी NRI कम्युनिटी है उसमें भी अधिकांश लोग ब्राह्मण हैं. तो ये सब एक या दो पीढ़ियाँ पहले जाएंगे आप, तो ये सब मंदिरों में पुरोहित, मंदिरों में ब्राह्मण थे, पर क्योंकि उनको ऐसे इकोनॉमिक मैनिपुलेशन हो गया उनके साथ आर्थिक छल हो गया, तो वो असह्य हो गए. और आज ऐसे ये दुर्दशा है कि जब भी हम कोई मंदिर में आते हैं तो एक भय होता है लगा कि वहाँ पे जो पंडा हो गए, वहाँ पे जो पुरोहित हो गए, यहाँ पे जो भी वहाँ का जो भी पुजारी हो गए वो पैसा मांगेंगे. तो ये क्यों हुआ है, ऐसे नहीं है कि वो पैसे के पीछे हैं. अभी कुछ कुछ ब्राह्मण हो सकते हैं जो पैसे के पीछे हैं, पर क्योंकि दे आर विक्टिम्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक मैनिपुलेशन, कि वो भी असहाय, वो एक शिकार बन गए हैं उसके. तो इस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से जो एजुकेशन और मैग्निफिसेंस जो वैदिक संस्कृति में था, मंदिर का योगदान, वो दोनों अभी नहीं रहा है. कि जो बुद्धिमान ब्राह्मण थे वो सब अपना ब्राह्मण का धर्म छोड़कर अभी या तो सरकार में चले गए, अमेरिका में चले गए, और जो मंदिर का सौंदर्य शानदार थी वो भी सरकार ने ले ली है. तो इसके कारण आजकल के मंदिर में क्या होता है, जाते हैं तो सबसे पहले लोग कुछ दान मांगते हैं. तो ये दुर्भाग्य की बात है. और कभी कभी हमें भी, अभी आप में से आने के वक्त, हम सब अभी मंदिर के लिए योगदान मांगने जा रहे हैं. तो वास्तव में द आइडियल सिचुएशन इज द गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड टू बिल्ड द टेम्पल, कि सरकार ने ही मंदिर बनाना चाहिए. तो इसी तरह से अधिकांश मंदिर बने हैं विश्व में, भारत में. और ऐसे ही सिर्फ विश्व भारत में ही नहीं, अगर रोम में, वेटिकन में जो बड़े बड़े चर्चेस हैं, फ्रांस में जो बड़े बड़े कैथेड्रल्स हैं, वो सब राजाओं ने बनाए हैं. तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई साधारण भक्त है जिसमें राजा का जैसा ऐश्वर्य नहीं है, पर वो अगर जिम्मेदारी लेता है मंदिर बनाने के लिए, तो हम कल्पना कर सकते हैं भगवान कितना प्रसन्न होंगे. अगर कोई राजा मंदिर बनाए तो बड़ी बात है, अच्छी बात है वो, पर राजा के पास पहले से ऐश्वर्य है, उस पर भी भगवान प्रसन्न होते, पर कोई साधारण सामर्थ्य का व्यक्ति अगर जिम्मेदारी लेता है तो भगवान कितने और गुना उस पर प्रसन्न होंगे। तो जरूर ये भगवान को प्रसन्न करने का बहुत उत्कृष्ट मार्ग है। तो अगला है पी, पी इज प्यूरिफिकेशन। तो मंदिर में हम आते क्यों है? प्यूर शुद्धिकरण के लिए। मंदिर का वातावरण ऐसे होता है कि जो भी हम जहाँ भी देखते हैं, या तो हम भक्त दिखते हैं, हमको तिलक दिखता है, हमको भगवान के चित्र दिखते हैं, भगवान के कीर्तन, भगवान की कथा सुनाई मिलती है, सब जगह हम हमारी जो इंद्रिया है, आवर सेंसेस बिकम बॉम्बार्डेड विद कृष्णा। जब हम बाहर जाते हैं तो आवर सेंसेस बिकम बॉम्बार्डेड विद माया। हम बाहर जाते हैं, हमें सारे इंद्रियों में हमको भौतिकवादी, हमको वहाँ से वातावरण ध्वनियाँ हमको प्राप्त होती है, पर मंदिर में हर ओर से हमको आध्यात्मिक ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं और उससे शुद्धिकरण में बहुत मदद होती है। जैसे हम बोले तीन स्तर है, पहले बोला था कि ये मेरे भोग के लिए, लोग सोचते हैं मेरे भोग के लिए जीवन या जीवन है या जगत है, दूसरा है कि मेरे भोग के लिए नहीं है, और तीसरा है कि ये भगवान की सेवा के लिए है। तो ये नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर के जाने के लिए क्या चाहिए हमको? शुद्धिकरण चाहिए। तो शुद्धिकरण अपने आप हो जाता है जब हम मंदिर में आते हैं। तो प्रभुपाद जी कहा करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द साइंस ऑफ प्यूरिफिकेशन। कृष्ण भावना क्या है? ये शुद्धिकरण का विज्ञान है। वे आजकल लोगों को पता है कि जो पानी है अगर गंदा हो गया तो उसको शुद्धिकरण कैसे करना है, अगर अन्न है वो खराब है तो उसको शुद्धिकरण कैसे करना है, पर अगर चेतना खराब है तो उसको शुद्धिकरण कैसे करना है वो कोई सिखाता ही नहीं है। अगर चेतना खराब है तो फिर व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। मान लिया कोई किसी के, ये शुद्धिकरण मतलब क्या, हम ये वर्ड, हम ये शब्द शुद्धिकरण अनेक बार सुनते हैं, पर शुद्धिकरण का अर्थ है कि जो छह अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो सब कम होना और भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ना, दिस इज प्यूरिफिकेशन। तो जिस हद तक ये अनर्थ हमारे हृदय में है उस हद तक हम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। जैसे कोई लोभी व्यक्ति है, कितना भी चीज़ें उसको प्राप्त करे, हमेशा उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी संतुष्ट नहीं होगा। कामुक व्यक्ति वैसे ही है। तो अगर संतुष्ट होना है तो हमें शुद्ध बनना है, और मंदिर में आते हैं तो ये वातावरण ही हमको शुद्ध बनाता है, हमारी चेतना से शुद्ध हो जाती है। फिर एल इज लव। तो हाँ, हम इस भौतिक जगत में मंदिर में जो भगवान का हमारे प्रति प्रेम है उसके बारे में श्रवण करते हैं, उसके बाद अनुभूति करते हैं। तो जैसे हमारे मंदिर का मोटोज में से एक राधे श्याम ने बताया कि द टेम्पल शुड बी लाइक अ यूनिवर्सिटी, अ हॉस्पिटल एंड अ होम। तो यूनिवर्सिटी यानी एजुकेशन हम चर्चा की, हॉस्पिटल यानी प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। जो जैसे हम अस्पताल में आते हैं तो क्या करते हैं, हम हमारी जो बीमारी है उसको ठीक करते हैं। तो जो भौतिक चेतना, भौतिक वासना जो है वो एक बीमारी के समान है। शुद्धिकरण मतलब हम उसको इलाज कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। तो मंदिर जो एक अस्पताल के समान होता है, और साथ साथ टेम्पल इज लाइक अ होम, एक घर के समान है। तो ये भगवान का घर है, भगवान हमारे पिता है, तो इसे हमारे पिता का घर ये हमारा भी घर होता है। तो जो खासकर जब मंदिर में आते हैं तो मंदिर में हमें भगवान का प्रेम सिर्फ भगवान के सामने जाकर उनके दर्शन करने से इतना अनुभव नहीं होता है जितना हम जब भक्तों से संबंध प्रस्थापित करते हैं। तो उससे भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने से हम दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं, दिव्य भगवान का जो प्रेम है उसकी अनुभूति करते हैं, और उससे हम भगवत प्रेम की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये बड़े ही दिलचस्प चीज़ है। ये कैसे है, जब लोग भगवान के आध्यात्मिक कार्य के लिए, भगवान की सेवा के लिए शुद्धिकरण के साथ में आते हैं तो बड़े सहयोग से वो रह सकते हैं। जो अभी आप जानते हैं हर 12 साल में कुंभ मेला होता है, तो कुंभ मेला करोड़ों के लोग संख्या में लोग जाते हैं। तो इंग्लैंड से 2-3 यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ लैंसेशायर और दो यूनिवर्सिटी से उन्हें कुछ एक्सपर्ट्स को भेजा यहाँ पे कि वो मॉब साइकोलॉजी, कि विशाल मात्रा में जब लोग आते हैं तो वो कैसे उनका कार्य होता है ये देखने के लिए। तो तभी उन्होंने क्या पता, उन्होंने सोचा कि ये कुंभ मेला में तो इतने लोग आते हैं और वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, जो सोने के लिए व्यवस्था नहीं है, जो शौच क्रिया करना है, नहाना है, उसके लिए व्यवस्था नहीं है। तो अगर पाश्चात्य देशों में ऐसा होता है तो फिर क्या हो जाए, तुरंत विध्वंस हो जाता है, हिंसा हो जाती है। जो हमारी रथ यात्रा है पाश्चात्य देशों में चलती है, तो एक बार एक पुलिस ऑफिसर आके प्रभुपाद जी को बोले कि दिस इज द फर्स्ट क्राउड दैट वी हैव सीन दैट हैज नॉट ब्रोकन एनी विंडोज. बोले ऐसे पहले ऐसे जुलूस है लोगों का जिसने कोई एक भी खिड़की तोड़ी नहीं है, और सब ये नौजवान है, सब में जोश है, पर कोई भी हिंसा नहीं कर रहे, क्योंकि वो भगवान के गुणगान के लिए साथ में आए हैं. जो तो हिप्पी लोग, जब भी 8-10 लोग हिप्पी साथ में आते थे तो क्या होता था, पुलिस लोगों को डर लगता था भाई हिप्पी क्या करेंगे. तो वो हिप्पी लोग भी ऐसे पागल होते थे, पागल यानी उनको दे लाइक टू डू अनकन्वेंशनल थिंग्स, उनको ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें करने में बड़ा आनंद लगता था. तो कभी कभी वो पार्क में आते थे, पार्क से रस्ते पे आकर नाचने लगते थे, तो फिर पुलिस आकर उनको गिरफ्तार कर लेती थी. पर प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा शुरू किया तो रस्ते पे नाच रहे थे और पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रहा था, तभी पुलिस उनको संरक्षण दे रहा था. तो ये भक्ति की दिव्यता है. तो ये कुंभ मेला के समय ये उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लैंसेशायर से कुछ तज्ञ को भेजा कि मॉब साइकोलॉजी स्टडी करने को, और वो वहाँ पे लगभग वो काफ़ी दिन तक चलता है, तो वो 1.5 महीने के लिए वहाँ पे थे. और वो जब वापस गए तो उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा, वो लंदन टाइम्स में आया था, मुझे किसी ने उसका मेल भेजा था. बोले कि दिस आवर 90 डे स्टे एट प्रयाग हैज रिवोल्यूशनाइज्ड आवर 90 ईयर्स ऑफ स्टडी ऑफ क्राउड साइकोलॉजी. कि हम 90 दिन जो यहाँ पे रहे उसके क्या हुआ है, अभी 90 साल तक हम क्राउड साइकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, उनका हमेशा जब ज़्यादा लोग एक जगह साथ में आ गए तो हिंसा हो जाएगी. पर तो यहाँ पे वो देखा कि हिंसा के सब कारण थे, पर इतने सारे लोग थे, पर सब बड़े शांति से, संयम से सब आगे चल रहे थे. और कभी कभी थोड़ा सा कुछ हो जाता है हादसा, बट बहुत कम. तो फिर उन्होंने कहे, इफ पीपल कम टूगेदर फॉर अ शेयर्ड कॉज विथ शेयर्ड वैल्यूज देन देर इज नो वायलेंस. तो ये उनका निष्कर्ष था कि अगर एक हेतु के लिए, एक आदर्श के साथ लोग आते हैं तो वहाँ पे हिंसा नहीं होती है. तो अभी हम मंदिर में देखते हैं कि अनेक प्रभुपाद जी के अंतर्राष्ट्रीय मंदिर में अनेक मंदिर देशों से लोग रहते हैं, अनेक बैकग्राउंड से लोग रहते हैं, अनेक प्रांतों से लोग होते हैं, पर सब साथ में आते हैं और सब बड़े आनंद से कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो यह है कि यहाँ पे हमें भगवान का निस्वार्थ प्रेम क्या है और उसमें हम अनुभव कैसे कर सकते हैं, यह हमें मंदिर में झलक मिलती है. और आखिरी है ई जो है एंगेजमेंट. एंगेजमेंट मतलब कि मंदिर में हमें सेवा करने का मौका मिलता है, कि हमारे जो इंद्रिया है जब हमको सेवा देते हैं तो वो शुद्ध होती है, और मंदिर में अनेक प्रकार से सेवा का हमें मौका मिलता है. तो इसीलिए प्रभुपाद जी एक बार कनाडा में थे, टोरंटो में, और वहाँ पे एक जब वहाँ पे रहे थे तो एक प्रपोजल आया था कि एक बड़ा महल था और उसको लगभग तभी 10,000 डॉलर्स लग रहे थे, और भक्तों के पास उतना समय था, पैसा था ही नहीं तभी. वो कहते कि हमें इतना पैसा देंगे तो ये मंदिर हम ये जगह ले सकते हैं और यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं. और फिर प्रभुपाद जी वहाँ पे देखने गए, देखने के पहले प्रभुपाद जी बोले कि ये $10,000 इज टू मच, बहुत ज़्यादा है, क्यों इतना हेडेक ले हम. फिर उस दिन शाम को टेंपल प्रेसिडेंट को प्रभुपाद जी बोले, वो अभी तक जगह अवेलेबल है क्या. हाँ प्रभुपाद, देखने को जाते हम. तो देखने को गए, सारा जगह उन्होंने देखा, और फिर पूरा देखने के बाद बोले, हाउ मच, कितना कीमत है. बोले $10,000. पाजी बोले बहुत ज़्यादा है, कौन इतना हेडेक लेगा. फिर आ गए वापस, और फिर अगले दिन सुबह वापस उन्होंने पूछा, वो जगह की कीमत कितना है. 10,000. कौन इतना हेडेक, हमारे पास पैसे है प्रभुपाद जी ने बोला. पूछा, बोला नहीं पैसे नहीं है. कौन इतना हेडेक लेगा, छोड़ दो बोले. और फिर जब जा रहे थे प्रभुपाद जी, 3 दिन वहाँ पे टोरंटो में रहे थे, जब जा रहे थे तो प्रभुपाद जी बोले कि सो हम वो मंदिर ले ले. तो अभी वो प्रेसिडेंट ने सोचा कि प्रभुपाद जी इतने बार बोले, प्रभुपाद जी वो बोले प्रभुपाद जी इच्छा कि नहीं लेना है. तो बोले उन्होंने बोला, मैं ही बोलता हूँ प्रभुपाद जी बोलने के पहले. बोले प्रभुपाद जी क्यों इतना हेडेक लेना है. वो प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी बोले हेडेक नहीं लोगे तो तुम खाओ पियोगे और पतन हो जाएगा तुम्हारा. इफ यू डोंट टेक अ हेडेक फॉर कृष्णा यू विल ईट स्लीप एंड फॉल डाउन. तो हमें अगर भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो क्या हो गया, तो सेवा नहीं है तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी. तो ये नरोत्तम दास ठाकुर एक सुंदर श्लोक में बताते हैं कि सारे अनर्थ है वो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो उसमें बताते हैं काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा मोह इष्टलाभ बने मद हरि गुण गाने। कहते हैं कि हम सब में ऐसे कुछ कर दिखाने की वासना है, तो ये अगर हम भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कुछ भौतिक चीजें करने के पीछे लग जाएंगे। तो काम कृष्ण कर्मार्पणे, तो जैसे हम सब में शक्ति है, कुछ सामर्थ्य है, कुछ कनेक्शन, कुछ कॉन्टैक्ट्स है, उस सब से अगर हम भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा कल्याण हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो क्या, हम कुछ भौतिक कार्य में लग जाएंगे और उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति रह जाएगी, वांछित हो जाएगी, उससे उल्टा हमारे उससे ग्लानि हो सकती है। तो श्री गुरुचरण प्रभु जो हमारे न्यू टेंपल के कोऑर्डिनेटर, हमें बता रहे थे कि सारे इस्कॉन में हमारा जो कॉन्ग्रीगेशन है, आप सब भक्त, ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि सब भक्त जा रहे हैं साथ में मंदिर के निर्माण के लिए। अधिकांश जगह जहाँ मंदिर होते हैं तो कुछ भक्त होते जो फंड रेजिंग के लिए आते हैं और वो फंड लेके आते हैं और उससे मंदिर बनता है। तिरुपति में जो मंदिर हुआ वहाँ पे ब्रह्मचारी लोग थे, उन्होंने बहुत डिस्ट्रीब्यूशन किया 8-10 साल तक, फिर उसके बाद मंदिर बना। पर यहाँ पे जो सहयोग से सब भक्त मिलकर प्रयास कर रहे हैं तो सबको सेवा मिल रही है, सबको प्रचार करने का मौका मिल रहा है। मैं कल एक व्यक्ति से मिला, कल एक कार्यक्रम था उसके बाद में, वो बता रहा था कि मैं यहाँ पे 5 साल से रह रहा हूँ और 5 साल में मैंने लगभग 4 साल 8 महीनों तक एक भी बार इस्कॉन का नाम नहीं सुना है, पर पिछले 4 महीनों में कम से कम 50 लोग मुझे मिले जो इस्कॉन के भक्त। बोले क्या आपने अचानक अपने कार्य बढ़ा दिए क्या? तो ये क्या हो रहा है, सब भक्त जो सहयोग के साथ, उत्साह के साथ जो कार्य कर रहे हैं, ये इस्कॉन के इतिहास में एक तरह से अद्वितीय है। इट्स वेरी वंडरफुल, बहुत ही दिव्य है ये। तो हम सबको सेवा का मौका मिलता है तो इससे हमारी ही प्रगति होती है, और वास्तव में यही असली भक्ति है। प्रभुपाद जी के हमेशा जो भक्ति होते हैं उसका ट्रांसलेशन कभी वो डिवोशन नहीं करते। भक्ति मतलब वो कहते थे डिवोशनल सर्विस, कि भक्ति में सेवा। क्यों? क्योंकि भक्ति अगर हृदय में है, अगर हम सही में भगवान से प्रेम करते हैं तो फिर हम जो भगवान की इच्छा है उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे हम, और फिर हम उनकी सेवा करेंगे। अगर वैसे नहीं कर रहे हैं तो फिर वो वास्तव में भक्ति नहीं है, वो सिर्फ मनोकल्पना है। तो प्रभुपाद जी कई बार कहते थे कि कैसे ये लोग बहुत से बार ऐसे करते हैं कि हम मंदिर में आते हैं और उनकी आंखों से आंसू आते हैं और वो दिखावा करते हैं कि हम बहुत प्रगतिशील है, इतने दिव्य भावनाएं आ रहे हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये कृष्ण भाव नहीं है, ये मिर्ची भाव है। मिर्ची भाव मतलब क्या, आंखों से आंसू आने के लिए थोड़ा आंखों के सामने मिर्ची रख दो, आंसू आ जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफ कोर्स अगर किसी का दिव्य भावनाओं का अनुभव होता है तो अच्छा है वो, बट अगर सिर्फ सही में अगर दिव्य भावनाओं का अनुभव हो रहा है, भगवान का प्रेम है, तो भगवान की इच्छा ही पूरी करी जाए हमें। और भगवान की इच्छा क्या है कि भगवान ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार, कि हमें उनके संदेश का प्रचार करना चाहिए। तो इसलिए यही वास्तविक भक्ति है, क्या कि भगवान के आंदोलन में प्रायोगिक रूप से हम सेवा में मदद करें। जो गुरुदास प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वे उनको प्रभुपाद जी ने वृंदावन के अध्यक्ष के रूप में नियोजित किया, और फिर वो वृंदावन जाकर रह रहे थे और प्रभुपाद जी दिल्ली में आए, तो प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए वो दिल्ली में आए थे, और जब कार से वृंदावन जा रहे थे तो वो सोचे थे अभी हम वृंदावन जा रहे, मैं जा रहा हूँ मेरे गुरु महाराज के साथ, तो फिर अभी शायद मुझे वो राधे श्याम के बारे में कुछ लीला बताए गए, कुछ दिव्य साक्षात्कार बताए गए, और वो इंतज़ार कर रहे थे, और सारे कार जर्नी में प्रभुपाद जी बिल्कुल शांत थे। और जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो बोले वो प्रभुपाद जी, जैसे ही वहाँ पे पहुँचने लगे तो एक ही शब्द बोले प्रभुपाद जी, सीमेंट, वेयर इज द सीमेंट, सीमेंट कहाँ है? फिर बोले प्रभुपाद कि ये क्या है, मैं सोचा था प्रभुपाद जी कुछ भगवान कृष्ण के बारे में, सीमेंट के बारे में बोल रहे हैं। पर फिर बाद में प्रभुपाद जी उनको समझाया कि वास्तव में हम डिवोशनल सर्विस डज नॉट मीन एब्जॉर्प्शन इन गॉड, डिवोशनल सर्विस मीन्स एब्जॉर्प्शन इन सर्विस टू गॉड। कि भक्ति का मतलब क्या है, सिर्फ भगवान के चिंतन में लीन होना नहीं है, नहीं वो जरूरी है, पर उसके साथ उसका महत्वपूर्ण भाग है कि भगवान की सेवा के चिंतन में लीन होना। यही प्रभुपाद जी का भाव था। प्रभुपाद जी चाहते तो वृंदावन में लेके हमेशा वो भगवान का नाम कर सकते थे, भगवान का स्मरण कर सकते थे, पूरे सारे विश्व में गया और भगवान की सेवा की, और वही उनका भाव था। तो प्रभुपाद जी क्या अपने चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तविक भक्ति जो है, दैट इज डिवोशन मीन्स डेडिकेशन, कि भक्ति का मतलब है समर्पण। कितने त्याग की भावना के साथ हम भगवान की सेवा करते हैं, वह हमारे भक्ति का सबूत है। और इसलिए वे चाहते थे कि हम सब प्रायोगिक रूप से भगवान की सेवा में लगे, उससे हमारा शुद्धिकरण होगा और साथ साथ विश्व का भी कल्याण होगा। तो प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो बाद में गुरुदासपुर उनसे एक बार मिलने आए थे, तो फिर प्रभुपाद जी अपना सर पकड़ के बैठे थे और गुरुदासपुर को बोले कि मैं मेरा भागवतम का भाषांतर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मंदिर बनाना है इसकी इतनी चिंता है मुझे, मंदिर के लिए पैसा आएगा कहाँ से। तो गुरुदासपुर वो अनुभव बता रहे थे हमको, बोले कि उस समय मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं प्रभुपाद जी को बोला प्रभुजी आपको कितना पैसा चाहिए, तो उस समय कुछ तो भी 2 लाख है, कुछ तो पैसा चाहता उनका, तभी वो मंदिर का उस फेज बनाने के लिए 2 लाख। प्रभुपाद जी वो बोले प्रभुपाद जी मैं वो पैसा लेके आऊँगा, आप आपका भागवतम ट्रांसलेट करो। प्रभुपाद जी सच्चा रियली हाँ जरूर लेके आऊँगा। और फिर वो बाहर आया, उसने क्या बोला मैं क्यों कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे पर अभी प्रभुपाद जी को वादा कर लिया मैंने। तो फिर तब से वो दिन रात मेहनत करने लग गए, जब अंत में उन्होंने जब मंदिर बनना वाला था तो वो लेके आए वो। और आज भी अगर जाओगे आप वृंदावन मंदिर में तो एंटर करते तो लेफ्ट साइड में तो वहाँ पे ऐसे स्टोन में लिखा गया है कि दिस टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द हार्ड वर्क बाय द एफर्ट्स ऑफ, उनके मेहनत से वह बनाया गया है। तो जब वो बोले थे कि मुझे पता नहीं क्या जोश आ गया मैंने बोल दिया, पर फिर बाद में जब बोला तो मैंने इच्छा की अब ये करना ही है मुझे, तो कैसे मैंने वो लक्ष्मी जमा की मुझे खुद को पता नहीं, पर वो भगवान की कृपा से हो गई। तो दिस लास्ट पॉइंट कि व्हेन वी हैव द डिजायर टू फुलफिल द डिजायर ऑफ द आचार्यस वी बिकम एम्पावर्ड बाय कृष्णा, कि जब हम इच्छा करते हैं कि मुझे जो आचार्य है उनकी इच्छा पूरी करनी है तो भगवान हमको सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं। कैसे सामर्थ्य प्रदान करेगी, कैसे यश प्राप्त करेगा वो हमें भी समझ में नहीं आता है, पर ये जरूर होता है। ये बार बार हम इस्कॉन के इतिहास में देखते हैं, जब न्यू वृंदावन में भक्तों का मंदिर बनाना था तो वो इतने गरीब थे, उनको कैसे तो भी वो ईट और सीमेंट लाने के लिए उनको पैसा था, तो अभी मंदिर बनाने के लिए आर्किटेक्ट के लिए भी पैसे नहीं था उनके पास। तो भक्तों ने सोचा कि हम ही उसका डिज़ाइन करेंगे, कोई भी आर्किटेक्ट नहीं था उसमें से, खुद हम ही खुद डिज़ाइन करेंगे। और उन्होंने कैसे तो डिज़ाइन किया, कभी ऐसे दीवार बनाई वो गलत हो गई तो वापस उसको तोड़ दी दूसरी बनाई, और ऐसा करके उन्होंने प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड बनाया। और जब 1984 में पैलेस ऑफ गोल्ड जब इनॉग्रेट हुआ तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा तभी दिस इज द ताज महल ऑफ द वेस्ट, जो और वो किसने, और अभी न्यू वेस्ट वर्जीनिया के अलग अलग कॉलेज आर्किटेक्चर कॉलेजेस से विद्यार्थी आते हैं इस मंदिर का आर्किटेक्चर स्टडी करने के लिए, जो कि बिना किसी आर्किटेक्चर से बनाया गया है। तो ये है भगवान की एम्पावरमेंट। तो अगर हम भी ये इच्छा रखते हैं कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान भी हमें दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे, और उसे हम भी ऐसे अनेक चमत्कार देखेंगे जिससे हमारी भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी और सारे पूना में और फिर उससे भगवान सारे विश्व में कृष्ण भावना की एक लहर आ जाएगी। सो समराइज, तो हमने चर्चा की कैसे शुरुआत में ये देवहूति के शिक्षाओं से कि सबसे पहले लोग सोचते हैं कि मुझे भोग ही करना है, तो वैसे है जैसे नमक के खड्डे में गिरकर सिर्फ नमक खाना, पर जब उसका त्याग कर देते हैं तो लोग सोचते हैं कि ठीक है मैं भोग नहीं करूँगा, मैं शांत रह जाऊँगा, निष्क्रिय बन जाऊँगा। पर वो ऐसे है बीमार व्यक्ति सिर्फ शांत निष्क्रिय हो जाता है, उसकी बीमारी उसे ठीक नहीं होती है, उससे ऊपर है ठीक है ये दुनिया या इंद्रिया मेरे भोग के लिए नहीं है, पर ये सब भगवान की सेवा के लिए है। ये भक्त की चेतना होती है और इस चेतना में हमें आनंद मिलता है और हम दूसरों को आनंद देते हैं। भौतिक स्तर पे हम छोटे बालक के समान होते हैं, खुद दुखी होते हैं दूसरों को दुखी बनाते हैं। और फिर उसके बाद में हमारे वैदिक संस्कृति में जो मंदिर का क्या महत्व है उसके बारे में, टी का क्या था फुल फॉर्म, ट्रांसेंडेंस, दिव्य अनुभव। तो ये ऐसे यहाँ पे जब यत्र गायंती मद भक्ता, जहाँ पे भगवान का गुणगान होता है वहाँ पे हमें भगवान की अनुभूति होती है। तो हमें भगवान का गुणगान करने के लिए सुविधा चाहिए, भागवत विधि के लिए हमको जगह चाहिए, इसीलिए हम मंदिर बना रहे हैं प्राइमरीली प्राथमिक रूप से। फिर ई क्या था, एजुकेशन। तो यहाँ पे हम शिक्षण देते हैं कैसे जीवन में जीना है, कैसे हमारे खुद को नियंत्रण करना है, भावनाओं को नियंत्रित करना है। हमने देखा कैसे गाइडेड मिसाइल्स मिसगाइडेड मैन, न्यूक्लियर जायंट्स इमोशनल इन्फेंट्स, देखा कैसे अमेरिका में वर्जिनिया टेक में, भारत में IIT में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरों की हत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो मंदिर है एक यूनिवर्सिटी के समान है और वो देता है। एम था मैग्निफिसेंस, भव्यता। ये मंदिर भव्य होता है, आध्यात्मिकवादी लोग कैसे भी मंदिर में आएंगे, कैसा ही मंदिर क्यों न हो, जो भौतिकवादी लोग हैं उनको आकर्षण करना है तो भौतिक दृष्टि से विशाल और भव्य होना चाहिए मंदिर। और यही वैदिक संस्कृति की, सब राजा अपने महल से बड़ा भगवान का मंदिर बना देते हैं। अब फिर इससे हमने चर्चा की कैसे ऐतिहासिक ग्लानि हुई, जब से श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को शाप दिया तो उससे ब्राह्मणों की शुद्धता और शक्ति कम हो गई, और फिर क्षत्रिय उतने धर्मनिष्ठ नहीं रहे, फिर उससे भगवान का संरक्षण नहीं था, इसलिए जो दूसरे देशों से लोग आकर उन पर आक्रमण करके उनको हरा दिया। तो मुसलमान लोगों ने बहुत से मंदिरों का विनाश किया, क्रिश्चियन लोगों ने उस श्रद्धा का विनाश किया जिससे लोग मंदिर में जाते थे, जो ग्रंथ थे उनका गलत अर्थ बताया। उसके कारण आज भारत में जो अधिकांश रूप से जो धर्मवादी लोग हैं वो निर्विशेषवादी है, और निर्विशेषवाद का परिणाम क्या होता है कि भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन से ज़्यादा आकर्षक लगता है, उसके कारण लोग या तो निर्विशेषवादी रहते हैं या भौतिकवादी बन जाते हैं। और फिर हम देखा कि लैंड सीलिंग एक्ट जो हुआ था उसके कारण जो मंदिरों की सारी संपत्ति चली गई, और अभी जो आर्थिक मांगे होती है मंदिरों में वो उसके कारण है। तो अगर जो राजा मंदिर बनाते हैं वो हम सब साधारण लोग अगर मंदिर बनाने का प्रयास करेंगे तो भगवान के असीम कृपा आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गए। फिर पी हमने देखा शुद्धि का प्योरिफिकेशन, कैसे मंदिर में अलग अलग सेवाओं के माध्यम से मंदिर के वातावरण से हमें वी आर बॉम्बार्डेड विद कृष्णा, चारों ओर से हमें कृष्ण की ध्वनि मिलती है, चेतना में हम लग जाते हैं। फिर एलॉस लाओ, ऐसे भगवान मंदिर में आकर भक्तों के संग में हमें भगवान के प्रेम की अनुभूति होती है। हमने कुंभ मेला में कैसे कोई हिंसा नहीं होती, रथ यात्रा में कोई खिड़कियां नहीं टूटती है, तो ये दिव्य प्रेम की अनुभूति के बारे में चर्चा की। और लास्ट ई वॉज एंगेजमेंट, ये हमारे ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमको अलग अलग सेवाओं का मौका मिलता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर हम भगवान के लिए हेडेक नहीं लेंगे तो हम खा पी कर सोकर पतन हो जाएगा हमारा। तो ये वास्तविक भक्ति मतलब न केवल सिर्फ आंखों से आंसू आना, पर डिवोशन मीन्स डेडिकेशन, भगवान की सेवा के लिए समर्पण होना, और उससे न केवल हम खुद का कल्याण करेंगे पर अनेक अनेक लोगों का भी उद्धार कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ग्रंथराज।